रात्रि क्लास चल रहा था 30/3/1967 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जब आत्माओं का बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए तो पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। और ये डिस्ट्रक्शन होते ही है नई दुनिया के लिए, क्योंकि नई दुनिया में सतो प्रधान दुनिया में अगर तमो प्रधान दुनिया के रहेंगे तो नई दुनिया भी तमो प्रधान बनाए देंगे। इसलिए नई दुनिया के लिए पुरानी दुनिया को भस्म करना पड़ता है। ये तो षष्ठ रूपी मकान है, बेहद का मकान है। और दुनिया में भी जो हद के मकान होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। हद की चीजें विनाश होती हैं नई बनने के लिए, तो ये भी पुरानी दुनिया है। और ये पुरानी दुनिया जरूर नई बनेगी, तो ये पुरानी दुनिया डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया कौन सी पुरानी दुनिया डिस्ट्रक्शन हो जाएगी? ये कह करके कौन सी दुनिया की तरफ इशारा किया खास? शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और पसंद नहीं आई तो 3 बार खलास कर दी। हम ब्राह्मण भी देखते हैं, इस ब्राह्मणों की हिस्ट्री में पहली बार ब्राह्मणों की दुनिया रची गई उसका नाम रखा गया है ओम मंडली, और वो भी पसंद नहीं आई तो विनाश कर दी। फिर ब्राह्मणों की दूसरी दुनिया रची ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की, और वो दुनिया भी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद देखा कि मम्मा की गद्दी नशीन कोई दूसरी ब्रह्मा कुमारी धर्मगुरु बन करके बैठ गई। और बाबा ने बोल भी दिया, इन सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारका की। फिर ये भी बता दिया कि जो दुनिया में भी बड़े बड़े मर्तबे आले होते हैं उनकी दुनिया वाले बहुत खातिरी करते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, छोटों छोटों की गुप्त रहती है, वो तो हो ही नहीं सकता। बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है, तो जो इशारा दिया था कि मम्मा की गद्दी नशीन जो दूसरी ब्रह्मा कुमारी बनकर बैठ गई और अमेरिका से टाइटल लेकर के आई वर्ल्ड मदर, अरे ब्राह्मणों की दूसरी दुनिया रची गई तो उस दुनिया का फाउंडर ब्रह्मा था ना, जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा गया और ब्रह्मा ने अपना सारा राजकाज ओम राधे मम्मा के ऊपर सौंप दिया। क्योंकि ब्रह्मा का तन पुरुष का था, कन्याओं माताओं के चार्ज में पुरुष को कैसे रखा जा सकता, इसलिए ओम राधे मम्मा को उस ब्राह्मणों की दुनिया का पालन करने वाला माता के रूप में वर्ल्ड मदर का टाइटल दिया। क्योंकि ब्राह्मणों की दूसरी दुनिया रची गई थी, माता तो चाहिए, परंतु कोई पूर्व जन्मों के हिसाब से बम्मा को कैंसर हुआ गले का और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बस उसी समय से श्रीमती केबर खिलाफ डायरेक्शन दिए जाने लगे, जो भी मम्मा की जगह पर गद्दी नशीन बन बैठी। ब्रह्मवाक्य मुरली में भी बोला है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए, मम्मा जब तक जीवित रही तो चार चित्र ही जो साक्षात्कार से तैयार हुए थे, जिनमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी समझाई जा सकती है, परंतु मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद माया की मत पर चलने वाले कोई माया नगरी में पैदा हो गए और उन्होंने ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए माया की मत पर। तो जो नई दुनिया रचने वाला बाप आया हुआ है ऊंचे से ऊंचा भगवंत जिसे आत्माओं का बाप कहा जाता है, उसकी आत्मा का ही नाम है शिव, उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, त्रिकालदर्शी है। वो आत्माओं का बाप है, आत्माओं को पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली। तो जो सभी आत्माओं का बाप है वो परम पुरुष हुआ। परम पुरुष को नई दुनिया रचने और पालने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है। तो नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए और उसकी पालना करने के लिए उस निराकार आत्माओं के निराकार बाप को क्या चाहिए? दुनिया में भी कोई मनुष्य होते हैं, अपना परिवार बनाने की इच्छा होती है, या कोई भी प्राणी मात्र होते हैं तो अपना परिवार रचने के लिए उनको किसकी दरकार होती है? है? माता चाहिए। ये दुनिया में जो परंपरा पड़ी है प्राणियों मात्र में कि परिवार की रचना के लिए, पालना के लिए माता चाहिए पहले पहले, उस माता को पिता अपनी सारी शक्ति सौंपता है, एड़ी से लेके चोटी की सारी पावर लगाता है। उस माता को कहा जाता है परम पुरुष की परा प्रकृति, प्रमाने प्रकष्ठ है, कृति माने रचना। तो पहली पहली प्रकष्ठ रचना है जिस भी पुरुष तन के द्वारा मुकरर रूप से या टेम्पररी रूप से वो परमपिता पार्ट बजाता है, तो उस रथ का नाम रखता है काम लेने के आधार पर ब्रह्मा। जैसे दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम रखा ब्रह्म। तो देखा जाता है कि शास्त्रों में भी है ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, इसलिए चार मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। तो जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश किया वो परम पुरुष की परम ब्रह्म रूपी माता कही जाती है। और ये भारत में खास प्रथा है कि पुरुष की जो पहली स्त्री जीवन में होती है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी बहुत मान्यता होती है संसार में। दूसरी तीसरी पत्नी की बच्चों की इतनी मान्यता नहीं होती है, तो वो परम पुरुष शिव भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस परम ब्रह्म के द्वारा रचना रचता है वो इस मनुष्य सृष्टि की नौकरियों वाली ब्राह्मणों की रचना में से सबसे श्रेष्ठ रचना सूर्यवंशी ब्राह्मणों की रचना कही जाती है। परंतु वो सूर्यवंशी ब्राह्मण भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुर्गति में जाने का काम करते हैं। और ये सारी दुनिया तो जब भगवान आते हैं तो अंधश्रद्धा वाली भक्त बन जाती है, भक्ति में मनुष्य इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता इस दुनिया में ऊंचते ऊंच पाटधारी कौन है, जो भगवान साकार बनता है और इस दुनिया में ऊंचते ऊंच पाट बजाता है। दुनिया में भक्ति मार्ग का गुरुडंग चलता है, गुरुओं की मान्यता बढ़ जाती है, उदयधारी गुरु जैसे जैसे बोलते हैं उनकी बातें सुन करके प्रभाव में आते रहते हैं। सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र सुनी सुनाई बातों पर प्रभाव में आ जाते, प्रभावित हो जाते तो दुर्गति को पाते हैं। जब सारी दुनिया की ऐसी दुर्गति हो जाती है भक्ति मार्ग में तब भगवान निराकार आते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और वो निराकार बाप, निराकारी आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी होने से जानता है कि साकार मनुष्य सृष्टि में कौन सी साकार आत्मा है, साकार शरीर धारण करने वाली, साकार शरीरधारियों के बीच जो तीनों कालों में पार्ट बजाती है, तीनों कालों में इस संसार में सत्य है, और वो एक ही सत्य है, बाकी सब झूठे, क्योंकि मनुष्य सृष्टि में इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की एक ही आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज है। और बीज तो अविनाशी होता है। जड़ें सड़ जाती हैं, मुख्य तना भी सड़ जाता है, डाल डालियां भी सड़ जाती हैं, टहनियां भी सड़ जाती हैं, फल फूल भी सड़ जाते हैं, लेकिन पहले फल के अंदर जो बीज तैयार होता है वो अविनाशी है। इसलिए जो खेती करने वाले किसान हैं वो जानते हैं कि कोई भी फसल हो, पेड़ हो, पौधा हो, उसका जो पहला बीज होता है वो नई फसल बनाने के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है जब पुराना होता है, सारा वृक्ष भी भले सड़ जाए, लेकिन जो पहला बीज है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अविनाशी है। इस मनुष्य सृष्टि में उस पहले चैतन्य बीज का विनाश नहीं होता। इसीलिए गीता में लिखा है नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। माना सत्य का कभी विनाश नहीं होता है और सत्य माने ट्रुथ अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रुथ इज गॉड। जो सत्य है 100% वो ही भगवान कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप में और गॉड इज वन ये भी कहा जाता है कि भगवान एक है। दो भगवान नहीं हो सकते। अगर उसके समकक्ष कोई दूसरा होगा तो भगवती का टाइटलधारी हो सकता है, भगवान नहीं। तो जिस अब्बल नंबर पार्टधारी में वो त्रिकालदर्शी निराकार शिव प्रवेश करता है, बल पुरुष तन है, लेकिन जो प्रवेश करने वाला है वो तो परम पुरुष है। पुरुष को वसुधैव कुटुंबकम रूपी परिवार बनाने के लिए, नई दुनिया का नया कुटुंब बनाने के लिए पुरुष चाहिए या स्त्री चाहिए? जिसे माता कहा जाए तो भले पुरुष तन में आता है तो भी अपना काम निकालने के लिए उसको टाइटल देता है माता। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, मामा ने मां, और अब्बल नंबर की मां। तो जैसे वो परम पुरुष है उसका नाम पड़ता है परम ब्रह्म, जिसका शास्त्रों में भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बल शिव की तीन मूर्तियां गाई हुई हैं सर्वोपरि देवताओं के रूप में, परंतु उन तीन मूर्तियों को सर नहीं नवाना है, परम ब्रह्म को सर नवाना है, क्योंकि माता गुरु के बगैर कोई का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जिस मुकर्रर रथ में वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप प्रवेश करता है, नई सृष्टि रूपी परिवार की रचना करने के लिए, पालना करने के लिए प्रवेश करता है, तो उसका नाम माता देता है। उस अब्बल लंबर माता से इस मनुष्य सृष्टि की, अब्बल वंश की पैदाइश होती है, और वो सूर्य वंश सर्वोपरि माना जाता है। परंतु जो बताया कि शिव बाप आशिक के रूप में इस दुनिया में आता है और भारत को माशूक बनाता है, भारत पर फिदा होता है, किसी दूसरे देश पर फिदा नहीं होता, क्योंकि दूसरे सभी देश पितृ प्रधान है, कोई भी देश मातृ प्रधान नहीं है, ये भारत देश ही है जो मातृ प्रधान है, इसमें माता की प्रधानता है। इसलिए गांव-गांव में, शहर-शहर में और सारी दुनिया में, देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें उस परम ब्रह्म की यादगार है, परम पिता के साथ यादगार है, दोनों का कंबाइंड रूप है, प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है, सदा प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, कभी निवृत्ति का पाठ बजाने वाले नहीं, और उसकी भारत में सबसे जास्ती शिवालय के मंदिर बनाकर पूजा होती है, जिस शिवालय में उस मात पिता के कंबाइंड पार्ट की यादगार शिवलिंग है। शिव नाम निराकार ज्योति बिंदु का है और लिंग बड़ा रूप होता है। जो बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बताई कि तुम बच्चों को सूक्ष्म ज्योति बिंदु की याद नहीं ठहरती है, तो बड़े रूप को ही याद करो, तो बड़ा रूप है लिंग, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, मेरे लिंग रूप की ही पूजा होती है और देवताओं के सभी इंद्रियों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। अब बताओ, निराकार शिवलिंग, शिव जिसे कहा जाता है, जिसकी निराकार स्टेज बिंदु का ही नाम शिव है, जिसको अपना शरीर होता ही नहीं, तो इंद्रियां होती हैं, फिर लिंग हो सकता है नहीं? तो फिर क्यों कहा और किसने कहा मेरे लिंग रूप की पूजा होती है? वो कैसे कह सकता है जिसको शरीर ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं, लिंग ही नहीं? तो बताओ, ये कौन कहता है? जिस मुकर्रर रथ में वो निराकार प्रवेश करता है और वो मुकर्रर रथधारी आत्मा जो मुकर्रर रूप से सारी मनुष्य सृष्टि के बीच इस मनुष्य सृष्टि में अंत तक आते आते टोटल जड़ रथ बन जाती है, शरीर बन जाती है, आत्मिक स्थिति का जैसे नाम निशान नहीं रहता, एकदम पत्थर बुद्धि। ऐसे देह अभिमानी पत्थर बुद्धियों का बाप, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो पत्थर बुद्धियों का भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? तो वो ऐसा कठोर पत्थर बन जाता है अंतिम जन्म के अंतिम क्षणों में, कि उसकी यादगार माउंट आबू के पहाड़ में दिखाई गई है, कि वो सारा ही पहाड़ एकदम मजबूत ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा पहाड़ है, उसकी जड़ इतनी गहरी है, इस धरणी में कि दुनिया के कोई भी पहाड़ की जड़ इतनी गहरी नहीं गई, इसलिए जब महाविनाश होता है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, तो सारी दुनिया हिल जाती है, जिन पहाड़ों को अचल कहा जाता है वो सब चलायमान होते हैं, और पहले ही अंतिम विनाश से पहले चलायमान हो जाते हैं। उन पर्वतों पर रहने वाली सारी बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं, जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होता है कैसे? भूकंप से। तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, परंतु वो पहाड़ जो धरणी में इतना गहरा अड़ा हुआ है वो अंत तक, जब तक के आखिरी बड़े से बड़ा भूकंप आए तब तक स्थिर रहता है। इसलिए उस पहाड़ पर रहने वाले ब्राह्मणों के संगठन का नाम अचलगढ़ रखा गया है। गढ़ माने किला, ऐसा संगठन का किला जो बड़े बड़े भूकंप आने पर उस पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ता, अंतिम विनाश में तो सारी दुनिया खत्म होनी है। तो बताया अटल पार्ट है, उस अचलगढ़ का जो माउंट आबू में है, जिस माउंट आबू पहाड़ पर गुरु शिखर की भी यादगार है, जो गुरुओं का गुरु है। दुनिया के ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो भी अपनी अपनी जनरेशन के बड़े बड़े गुरु हैं। जैसे क्राइस्ट दुनिया की 500 करोड़ आबादी में से लगभग आधे 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप कहा जाता है, परंतु वो भी बेहद का बाप नहीं है। सारे मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ का बाप नहीं है। जो 500-700 करोड़ का बाप है वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। जो इस मनुष्य सृष्टि में सदैव अटल होकर पार्ट बजाता है, और धर्म पिताएं तो आया राम गया राम, बीच में आते हैं बीच में ही चले जाते हैं। उन द्वैतवादी धर्म पिताओं को भी गोद में खिलाने वाला ब्रह्मा वो भी आदि ब्रह्मा नहीं है। आदि ब्रह्मा होता तो उस ब्रह्मा की यादगार होती भारत में, ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनता पूजा करने के लिए, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का कोई मूर्ति नहीं बनाता, कोई ब्रह्मा को याद भी नहीं करता, क्योंकि उस ब्रह्मा की लाज ब्रह्मा वत्सों ने नहीं रखी। जो ब्रह्मा वत्स कम कुरियों के ब्राह्मण कहे जाते हैं, शास्त्रों में 9 कुरियों के ब्राह्मण माने गए, जिन 9 कुरियों से चोटी के नौ ब्राह्मण तैयार होते हैं, जो नवग्रह के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। वो नौ बीज हैं, मनुष्यों की नौ प्रकार की जनरेशन के बीच, उनमें ऊंचे ते ऊंची जनरेशन है सूर्यवंशी। बाकी सब नंबर वार, तो जो नंबर वार हैं बाद वाली कुरियों के ब्राह्मण, द्वैतवादी द्वापर युग से कोई दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष की दाई ओर की डालियां हैं, और कोई बाम मार्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं बायां हाथ की तरफ। दायां हाथ और बायां हाथ दोनों में कौन सा अच्छा माना जाता है, कौन सा खराब? दाएं हाथ से दान धर्म करेंगे हमेशा, और बाएं हाथ से कचरा साफ करने का काम करते हैं, गंदगी सफाई का काम बाएं हाथ को मिला हुआ है। तो बाईं ओर की जितनी भी डालियां हैं सच्चे मनुष्य सच्चे वृक्ष की, वो सब विभिचारी हैं। विभिचार वैश्याएं फैलाती हैं। विशेष धर्म आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, नहीं तो द्वापर युग से पहले अद्वैत देवताओं का राज्य था। द्वैतवादी धर्म पिताओं का राज्य नहीं था, धर्म नहीं था। ये द्वैतवादी धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जब से आते हैं, तब से दुनिया में दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं पैदा होती रहती है, और फिर झगड़े बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब भारत में देवताओं का राज्य था, तो उन देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। आ माने नहीं, द्वैत माने दो, माने वो देवताएं एक राजा को मानने वाले थे, या तो सत्ययुग में एक नारायण के राज्य में, या तो त्रेता युग में एक राम को मानने वाले। उसको कहते हैं अद्वैत देवताएं। जिनकी रचना दिति नाम की माता से होती है, दिति माने खंडित, और श्रेष्ठ माता का नाम था अदिति। आ माने नहीं, दिति माने जो खंडित नहीं होती, विविचारणी नहीं बनती, अखंड सती, जिससे देवताएं पैदा होती हैं। तो बताया कि जो अखंड देवताओं की दुनिया थी, रामकृष्ण की दुनिया कही जाती है, उस दुनिया का रचयिता एक था, जो इस मनुष्य सृष्टि में वो एक सदा विराजमान रहता है पार्टधारी के रूप में, हीरो पार्टधारी। इसलिए भक्ति मार्ग का जो सात्विक मंदिर था द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर, उसमें जो लिंग दिखाया गया था उसमें हीरा जड़ा हुआ था, हीरो पाटधारी की यादगार। और वो हीरा बड़े लिंगाकार पत्थर में जोड़ा हुआ था। वो पत्थर है शरीर रूपी रथ की यादगार, जिस रथ का मालिक है वो हीरा। वो हीरा पत्थर है, जितने भी रत्न होते हैं सब पत्थर होते हैं। पत्थर बुद्धि है, तो चैतन्य आत्मा है या नहीं है? भले पत्थर आई गई बुद्धि, लेकिन आत्मा चैतन्य है या नहीं है? चैतन्य तो है, लेकिन पत्थर बन जाती है संग के रंग में आते आते। ये मनुष्य सृष्टि सारी की सारी ऐसी ही, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का जिस अविनाशी धर्म खंड से आरंभ होता है वो भारत देश मातृ देश है, और माताओं में खासकर भारत की माताओं में ये खासियत है कि वो भावनावादी ज्यादा होती है और बुद्धिवादी कम होती है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। आखिरीन इन माताओं की भी कोई मुखिया होगी है? बाबा तो कहते हैं जैसे कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देखकर छोटे करेंगे, तो कोई बड़े से बड़ी माता होगी या नहीं होगी? कौन है? कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म में भी यही कमजोरी है, क्योंकि प्रकृति है शरीर रूपी, प्रकृति शरीर जड़ है और पांच तत्वों का, जड़ तत्वों का संघात है। उन जड़ तत्वों में भी जो सार रूप तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता, सार माने बीज, वो है इस मनुष्य सृष्टि का वो बीज जिसका शरीर कभी नष्ट नहीं होता। और सभी मनुष्य आत्माओं के शरीर नष्ट हो जाते हैं, वो शरीर रूपी रथ कभी नष्ट नहीं होता, क्यों नहीं नष्ट होता? क्योंकि जो ऊंचते ऊंच आत्मा है, सभी आत्माओं का बेहद का बाप, जो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, वो उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है। किसमें? आत्मा में या रथ में? है रथ में प्रवेश होता है। इसलिए गीता में बोला है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, तेरा ये जो शरीर है, इस दुनिया में धर्म का क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, क्षेत्र मैदान को कहा जाता है, युद्ध का मैदान, कर्म का मैदान। जो पहले अध्याय में पहले श्लोक में ही बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। ये संसार अनेक प्रकार के धर्मों की युद्ध भूमि है। कर्म भूमि है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, उन धर्मों को लेकर के सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार के कर्मकांड बनाए हुए हैं गुरुओं ने। हिंदू कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद जलाना अच्छा है, वही सबसे अच्छा कर्म है। और मुसलमान क्रिश्चियन क्या कहते हैं? जलाना नहीं है, अरे ये तो बड़ा पाप हो जाएगा, उसको तो जमीन दोज करना चाहिए, क्योंकि कयामत के टाइम पर अल्लाह मियां जब आएगा, गॉड फादर आएगा, तो जो जमीन दोज हैं उनको जगाएगा। अरे ये अज्ञानता की नींद में सोने की बात है। कि कोई शरीर जो दाब दिए गए हैं मिट्टी में, बोठ करके जग करके खड़े हो जाएंगे? शरीर तो सब जड़ सड़ जाते हैं, कोई शरीर रह जाता है क्या? उन शरीरों के तो जग करके उठ के खड़े होने की बात ही नहीं है। हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं, ए टू जेड अब्बल नंबर मनुष्य आत्मा से लेकर के 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, वो सभी मनुष्य आत्माएं अज्ञानता की नींद में सो जाती है। जैसे आजकल आप सब लोगों ने इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उसको बच्चे के रूप में पट पड़ा हुआ, सोया हुआ दिखाते हैं। देखा है? कौन है? शंकर को दिखाते हैं। अरे मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, वही अज्ञान की नींद में सोया पड़ा है, तो फिर दूसरों की क्या औकात? वो सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े होंगे या कोई जग रहा होगा? सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े, सब समझते हैं, कि हम देह हैं, कोई नहीं जानता कि हम चैतन्य आत्मा हैं। और उन देहधारी मनुष्यों के बीच उन सब देहधारी मनुष्यों का बाप सबसे जास्ती अज्ञान नींद में सोया हुआ पड़ा होगा या कम होगा? क्योंकि वो तो सबका बाप है, बोलते भी हैं ब्रह्म वाक्य में, मुरली में बार बार, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। तुम तो हो ही पत्थर बुद्धि, तुम तो हो ही अज्ञान नींद में सोए हुए, लेकिन तुम्हारा बाप जो है ना, वो तो बहुत ही पत्थर बुद्धि बन गया। उसकी यादगार है माउंट आबू का पहाड़, लेकिन ऐसा पत्थर बुद्धि पहाड़ है, हिलने वाला है, या अचल है, अटल है? अचल है। सारी दुनिया टल जाएगी, चल जाएगी, लेकिन वो ऐसी पत्थराई हुई बुद्धि है कि वो चलायमान नहीं होगा। पत्थर बुद्धि शरीर, वो अनादि है इस मनुष्य सृष्टि में, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। इसलिए शास्त्रों में एक कथा आती है, ऊंचे थे ऊंचे भगवंत शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा, इस लिंग का आदि मध्य अंत खोज के लाओ। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए लिंग में और विष्णु जी नीचे की ओर गए, और जाते ही रहे, कहीं अंत नहीं मिला और हार करके वापस आ गए। देखो कैसी कथा बनाई हुई। वो अनंत है, अनादि है, क्या क्या है अनंत अनादि? रथ। अब किस बात में पत्थर बुद्धि? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था, उसमें जो हीरा था, वो हीरा निराकार आत्माओं के निराकार बाप की यादगार है क्या? है या नहीं? क्यों नहीं है? हाँ है, माताएं कहती नहीं, भाई कहते हैं। अब कौन सच्चा कौन झूठा? वो जो हीरा है वो निराकार की यादगार है या साकार रथ की यादगार है? क्यों? निराकार की यादगार। वो निराकार पत्थर बुद्धि बनता है तो उसकी यादगार कैसे होगी? निराकार आत्माओं का निराकार बाप शिव त्रिकालदर्शी है या कभी पत्थर बुद्धि बनता है? इस पत्थर बुद्धियों की देश में आता है। पत्थर खर बुद्धियों के संग के रंग में रंग जाता है या नहीं रंग जाता है? नहीं रंगता, वो कोई से प्रभावित नहीं होता, उसको किसी का संग का रंग नहीं लगता, तो वो तो पत्थर बुद्धि नहीं बन सकता। फिर जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में हीरा पत्थर रखा हुआ था, वो किस आत्मा की यादगार है? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो मनुष्य, जैसे सारी मनुष्य सृष्टि पत्थर बुद्धि बनती है, वो बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। किस बात में पत्थर बुद्धि? अरे कैसे माना जाए पत्थर बुद्धि? ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बोला, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं मानेंगे। और आज तो दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े बुद्धिमान है, वो तो बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानेंगे। तो क्या बात है कि सोमनाथ मंदिर में जो लिंग में हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर बुद्धि की यादगार पत्थर हीरा है? कौन सी बात के आधार पर कहें? मुरली में बार बार आता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। तो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती विकारी पत्थर बुद्धि कौन बनता है विकारों के मामले में? शिव आते हैं तो निर्विकारी में आते हैं या पतितम विकारी कांटे में आते हैं, बड़े से बड़े कांटे में आते हैं या छोटे मोटे कांटे में आते हैं? जो दुनिया का बड़े से बड़ी विकारी कांटा है, जो शास्त्रों में भी दिखाया गया कि सागर मंथन हुआ तो हाला हाल विष निकला, और सारी दुनिया घबराने लगी। अब इस विषय विकार से हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उस विष को, हालाहाल विष को जो संसार को नष्ट करने वाला था, उसको पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो कौन तैयार हुआ? कहते हैं एक ही है विषपाई, वो तैयार हो गया। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को ही विष कहा जाता है। ये विष पीने से आत्मा रसातल में चली जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतित हो जाती है। बाबा तो यहां तक बोलते, ब्रह्म वाक्य है, विकार में गए तो पांच मार से नीचे जैसे कोई गिरता है तो हड्ड गुड्ड सारा ही टूट जाता है। ऐसी हालत हो जाती है। इस सभा में तो सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां बैठे हैं, बहुतों ने अनुभव भी किया होगा कि ब्राह्मण जीवन में माया जब अपना विकराल वार करती है तो यदा कदा विकारी भी हो जाते हैं, क्योंकि माया से युद्ध है। युद्ध में दो योद्धाएं लड़ते हैं, कोई एक योद्धा ज्यादा पावरफुल होता है तो दो चार दस घूंसे लगाएगा, फिर जो दूसरा योद्धा है कम से कम एक मारेगा कभी ही नहीं मारेगा। तो ऐसे ही है, ये माया का युद्ध है। माया रावण विकारी है, वो विकारों से वार करता है। तो जो देवात्माएं द्वापर से द्वैतवादियों के संग के रंग में आई वो 63 जन्मों से विकारी होती आई है। तो विकारों का रस लेने का अभ्यास पक्का हो गया है। कितना भी ज्ञान अमृत पीते हैं लेकिन कहीं न कहीं गफलत हो जाती है तो नीचे गिर पड़ते हैं। जब नीचे गिर पड़ते हैं, 5 मार से नीचे गिरते हैं जैसे, तो बुद्धि में ज्ञान रह जाता है। क्या अनुभव किया, रहता है नहीं रहता, सारा ज्ञान उड़ जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि शंकर जो त्रिनेत्री कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत शिव का रथ है और वो विषपाई कहा जाता है। उसको त्रिनेत्री क्यों कहते हैं, क्यों तीसरा नेत्र दिखाया जाता है,
ज्ञान का
तीसरा भले विषपाई है लेकिन फिर भी ज्ञान का लोप बुद्धि में से नहीं होता। कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश बना जरूर रहता है। जब से बाप का बच्चा बनता है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच पहलौटी का बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, अभी पिछले वर्ष की अव्यक्तवाणी में बताए भी दिया कि तुम बच्चे जिसे बाप दादा कहते हो समझते हो वो मूल रूप में असल बाप दादा नहीं है। जो स्मृति दिवस मनाते हो वो स्मृति दिवस नहीं है असली, असली स्मृति दिवस है 5 दिसंबर, जब निराकार आत्माओं का निराकार बाप और उस निराकार बाप का पहलौटी का बच्चा आत्मिक स्टेज में पहली बार स्थिर हुआ और बाप से पहली बार मिलन मेला मनाया, वो 5 दिसंबर का दिन था। तो असली बाप दादा कौन हुआ? देहधारियों को असली बाप दादा कहें या आत्माओं का बाप और आत्माओं का जो बेहद का बाप है उसका पहलौटी का बड़ा बच्चा, दोनों का मेल असली बाप दादा है, है? हाँ, जो बच्चे देवहन में रहे तो देवहन में रहने के कारण उनको देह का बाप और देहधारियों का बड़ा भाई याद आया और उनको टाइटल दे दिया बाप दादा। लेकिन टाइटल देने वालों ने ये समझा कि हम आत्माएं हैं, हम देहधारी नहीं है, तो आत्मिक परिवार को पहले देखना है या देवान वालों के परिवार को देखना है? तो आत्मिक रूप में जब देखेंगे तो बिंदु बिंदु आत्मा है, सब भाई भाई, और उन भाई भाइयों का बाप शिव ज्योति बिंदु, जो कभी देह नहीं धारण करता, देह से न्यारा रहता है, भले मुकर्रर रूप से किसी देह में प्रवेश करता है फिर भी वो असली ज्ञान सूर्य है, चैतन्य। जैसे सूर्य चांद सितारों नदी पहाड़ों पोखरों झीलों से सदैव डिटैच होके रहता है कि अटैच होके रहता है? डिटैच होके रहता है। ऐसे ही वो आत्माओं का बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में आता तो है, मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है, लेकिन फिर भी सदा डिटैच होकर रहता है कि लगाव झुकाव में आता है, सदैव डिटैच होकर रहता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, मनुष्य आत्माओं के बीच में निराकार बाप का बड़ा बच्चा, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। जैसे और सब मनुष्य आत्माएं सामाजिक प्राणी हैं, जीवन भर समाज में रह करके जिंदा रह सकती है कि बिना समाज के जीवन भर जिंदा रह सकती है? समाज के पीछे चलना पड़ता है, समाज के बगैर जैसे जीवन नहीं। जैसे सागर की मछली सागर में है तो जीवन है, और सागर से बाहर निकाल दी जाए तो मर जाती। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य आत्मा ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके ऊपर समाज का प्रभाव, संगठन का प्रभाव सबसे जास्ती पड़ता है। और खास करके कलयुग में तो संगठन का ही सबसे बड़ा प्रभाव रहता है। ये द्वैतवादी दुनिया में कम से कम दो का संगठन तो जरूर होना चाहिए। तो देखो, द्वापर युग से जितने भी दुनिया में इस दुनिया में धर्म पनपते हैं, उन धर्मों में कौन सा धर्म है जिसका संगठन इस द्वैतवादी दुनिया में बड़े से बड़ा संगठन रहा? कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म इतना प्रबल संगठन रहा कि द्वैतवादी दुनिया में लंबे से लंबे समय तक उनका राज्य चला, सारी दुनिया में इस्लामियों का राज्य चला। क्या कारण हुआ कि और धर्म वालों का इतना राज्य नहीं चला दुनिया में? है नहीं, वो सारे ही मुसलमान जीवन में किसी भी देश में कहीं भी पैदा हो, कहां भी रहते हो, उन सब की बुद्धि काबा में लगी रहती है। एकाग्र रहती है, संगठन में लगी रहती है, इसलिए वो बड़े पावरफुल रहे। ये तो अभी 200, 300 वर्ष, 250 वर्ष से क्रिश्चियंस का प्रभाव दुनिया में बढ़ गया, नहीं तो इस्लामियों का ही राज्य हमेशा था। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है, संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे बड़ा काम करती है, क्योंकि ईश्वर की जो दी हुई शक्ति है ज्ञान की शक्ति, जिस ज्ञान के आधार पर मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी को पहचाना जाता है, वो ज्ञान तो मनुष्यात्माएं धारण ही नहीं कर पाती, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी है शिव बाप, उस बाप का वर्षा, निराकारी ज्ञान का वर्षा तो निराकारी बाप का बड़ा बच्चा लेता है। दुनिया में ये परंपरा चली आई, हिस्ट्री में देख लो, राजाओं ने अपना राजाई का वर्षा कौन से बच्चे को सौंपा? ये परंपरा कहां से चली? दुनिया की जितनी भी परंपराएं हैं अच्छी अच्छी, वो सब परमपिता के द्वारा चलाई जाती है। तो परमपिता इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो बड़ा बच्चा बाप को पहचानता है, बाप से पहले पहले मिलन मेला मनाता है, उस बच्चे को बाप अपना त्रिकालदर्शी ज्ञान का वर्षा सौंप देता है। उस ज्ञान के आधार पर वो बच्चा क्या करता है, मनन चिंतन मंथन करके उस वर्षे को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, विस्तार करता है, और उस विस्तार में अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या विशेष पार्ट बजाने वाली हूं, 84 जन्मों में मेरा विशेष पार्ट क्या है। तो पहले वो अपने को पहचानता है, और अपने बाप को पहचानता है कि मेरे बाप से मुझे क्या वर्षा मिलता है, क्या वर्षा मिलता है, हैं? अकूट ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो जो बाप का वर्षा है, अकूट वर्षा है, अच्छा बच्चा वो ही कहा जाता है बाप का, जो बाप के वर्षे को वृद्धि में लाए। बाप का दिया हुआ जो वर्षा है अगर कोई बच्चा गंवा देता है, नष्ट कर देता है, तो उसे अच्छा बच्चा कहेंगे?
नहीं।
कहेंगे
नहीं।,
नहीं। तो बाप कहते हैं ब्रह्म वाक्य में कि अभी माने जब ब्रह्मा के तन में बोल रहे थे तब गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत पीकर देवताएं बनते हैं और अमृत मंथन करने से निकलता है। तो जो जितना मंथन करते हैं उतना अपने जीवन का 84 जन्मों का भी सार निकाल सकते हैं, मंथन करके अपने अपने 84 जन्मों को जान सकते हैं कि मुझ आत्मा पाठधारी ने इस सच रूपी रंगमंच पर कौन कौन से जन्म में क्या क्या पार्ट बजाया था, किस देश में बजाया था। नहीं तो अव्यक्तवाणी में तो बताया है कि बाप दादा नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा पार्ट क्या है। हर एक आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन की शक्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से संकल्प विकल्प को पहचान करके अपने कर्मों के आधार पर, अपनी वाचा के आधार पर अपने पार्ट को पहचानेगी, बाकी बाप दादा नहीं बतावेंगे। तो साबित हुआ कि ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्म वाक्य मुरली निकली, उस मुरली का मनन चिंतन मंथन पहले पहले करके कौन सी आत्मा अपने पार्ट को पहचानती है, जिसका डिक्लेरेशन ब्रह्म वाक्य में ही कर दिया پہلے سے ہی بتا دیا. ان لکشمی نارائن کا جنم کب ہوا؟ آج سے 10 ورش کم 5000 ورش ہوئے جب ان لکشمی نارائن کا پرتکشتا روپی جنم ہوا. اور ہم سب برہمن جانتے ہیں کہ برہمنوں کی دنیا میں باپ کا پرتکشتا ورش کب منایا گیا تھا؟ 76 میں دھوم دھام سے باپ کا پرتکشتا ورش منایا گیا. اور 77 میں سمپورنتا ورش بھی منایا گیا. باپ کی آتما نے سمپورن روپ سے اپنے سوروپ کو پہچان لیا, پارٹ کو پہچان لیا. اس سمے سارے بھارت کی راجدھانی جو دلی ہے اس کے چاروں کونوں پر برہما کمار کماریوں نے سمپورنتا ورش کی یادگار میں شیولنگ کے بڑے بڑے چتر بنائے تھے, رتھوں پر رکھ کر کے دلی کے چاروں کونوں پر گھمائے تھے. کہیں کی یادگار کہ وہ آتما لنگ روپ میں منا بڑے روپ میں منا ساکار شریر روپی رتھ میں سوکھم جوتی بندو کے روپ میں اپنی اسٹیج پکڑ چکی. جس کی یادگار سمپن گاؤں گاؤں اور شہر شہر کے بھارت کے مندر میں دکھائی جاتی ہے, شیولنگ جسے ایک ہی شیولنگ کے سامنے جا کر بھکت لوگ کیا بولتے ہیں, تمیو ماتا, تو ہی ایک میری ماتا ہے, تو ہی ایک میرا پتا ہے. ایک یا دو؟ کیوں, جلاداری نہیں ہے ساتھ میں, ماتا کا روپ نہیں ہے, تو ایک کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جو بھکت ہیں ان کا کانسنٹریشن لنگ کے اوپر ہوتا ہے یا جلاداری کے اوپر ہوتا ہے؟ لنگ کے اوپر ہوتا ہے. وہ جو لنگ روپ ہے وہ ساکار بڑا روپ ہے, شریر کی رتھ کی یادگار, جو 5 تتوں کا اویناشی پتلا ہے. شاستروں میں بھی جس کے ماں باپ کا کوئی پریچے نہیں جانتا, کب اس کا جنم ہوا کوئی نہیں جانتا, وہ انادی ہے, انت ہے. ششٹ روپی رنگ منچ پر اس لنگ کا آدی انت نہیں ہے, اس لیے ایک نراکاری ہیرے کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جو یاد کا پرشارتھ کرتے کرتے سویم باپ سمان بن جاتا ہے. باپ بن جاتا ہے یا باپ سمان بن جاتا ہے؟ باپ سمان بن جاتا ہے. یہ مسلمان بھی کہتے ہیں آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. مانا باپ باپ ہی ہے, بچہ کبھی باپ نہیں ہو جاتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے कि बाप का बड़ा बच्चा बाप के समान हो सकता है। तो बाप समान
निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को आत्मा पकड़ लेती,
उस शरीर रूपी रथ में रहते रहते पकड़ लेती है। इसलिए वो एक लिंग दिखाया जाता है जो भारतीय परंपरा में हिस्ट्री में राज परिवारों में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है। क्या किसकी मान्यता है? एक लिंग स्वामी, दो चार आठ लिंग नहीं जीवन में, क्या एक लिंग, एक पतिव्रता। तो देखो वो जो लिंग रूप है जिसमें दो रूप अविनाशी है, एक शरीर रूप से बड़ा रथ रूप और दूसरा उस रथ में निराकार आत्मा, निराकारी स्टेज को सदा पकड़ने वाली। कम से कम आधा कल्प तक निराकारी स्टेज में रहती, देह की याद नहीं रहती। सतयुग त्रेता में सभी देवी देवताएं आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते, तो उसका अनादि रूप दिखाया कि पुरुष तन में प्रवेश करता है और उसको टाइटल देता है परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माता। एक में ही दो रूप हो गए, है पुरुष तन लेकिन टाइटल क्या दिया, काम निकालने के लिए नाम क्या दिया, ब्रह्मा नाम दिया। फिर ये भी कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अब्बल नंबर जिस तन में प्रवेश किया उस अब्बल नंबर तन के द्वारा अब्बल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, जो मुसलमानों में भी आज तक विख्यात है, अल्लाह अब्बल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। कौन सा अव्वल नंबर धर्म है?
सनातन
धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिससे आदिकालीन कोई भी धर्म नहीं होता और सभी धर्म उसके बाद इस दुनिया में आते हैं। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। कैसी प्रवृत्ति? माता और पिता दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिनको कहा जाता है बाप दादा, जिनकी चित्रों में भी यादगार है। वो बाप दादा जब साकार रूप में पार्ट बजाते हैं नई मनुष्य सृष्टि रचने के लिए, तो जगत जननी माता और जगत पिता प्रजापिता के रूप में संसार में विख्यात होते हैं। जिसको मंदिर में दिखाया गया जलाधारी साकार रूप में, स्त्री चोले के रूप में, और लिंग रूप बाप, दोनों प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में कभी नहीं। प्रवृत्ति का अर्थ ही है प्र माने प्रकृष्ठ रूप से, और वृत्ति माना व्रत। व्रत किसे कहते हैं? गोल गोला। इसलिए वो लिंग रूप जलाधारी में दिखाया गया, और जो अर्घा होता है वो वृत्त रूप बनाता है। प्रकृष्ठ वृत्ति दिखाई गई है, और धर्मों के धर्म पिताएं जीवन भर एक के साथ वृत्त प्रवृत्त होकर नहीं रहते। वो धर्म पिताएं एक के साथ प्रवृत्ति नहीं निभा पाते तो अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाया, उनके धर्म में ये नूद है कि अनेक बार डाइवोर्स दे सकते हो और अनेक बार है क्या शादियां भी कर सकते हो। तो वो प्रवृत्ति के पक्के कहे जाएंगे नहीं, वो सब निवृत्त बाकी के धर्म हैं। जीवन भर एक प्रवृत्ति को नहीं निभाते हैं, इसलिए झगड़े फसाद बढ़ते हैं, दूसरी दूसरी माताओं के साथ। जब उनकी लगन हो लग जाती है तो उन दूसरी माताओं से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ते। तो लड़ाई झगड़ा दुनिया में मारा मारी बढ़ती ही जाती है। ये बाप तो ऐसा बाप है मनुष्य शक्ति का, और वो माता भी ऐसी माता है जिसके अंदर ये श्रेष्ठ भाव पनपता है, श्रेष्ठ संकल्प। क्या? वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। पूर्व जन्म में भी सती के रूप में उसका गायन है। सती कहा जाता है सत्य को धारण करने वाली, और सत्य एक ही होता है, दो सत्य नहीं हो सकते। तो षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो एक आत्मा सत्य का 100% जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है, उसी आत्मा को पति के रूप में वो वर्ण करती है, किसी दूसरी आत्मा को वर्ण नहीं करती। इसलिए अव्वल नंबर सती पार्वती को कहा जाता है, वही आत्मा है जो 100% सारी दुनिया को इस भवसागर से पार लगाने के लिए अव्वल नंबर निमित्त बनती है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब वो निकलती है बाप की सहयोगिनी बनकर, जीवन संगिनी बनकर, तो बाप की राजधानी संपन्न बन जाती है। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति, ऐसी धारणा शक्ति अव्वल नंबर की कि जब वो निकलती है तो संसार की सबसे सशक्त राजधानी तैयार हो जाती है, और चुटकियों में इस ड्रामा का अंत हो जाता है। जो बोला है पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वो निकलती है और अंत में पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। कब निकलती है अंत? कब? जब मनुष्य सृष्टि के बाप का पुरुषार्थ का अंत होता है, पुरुषार्थ परिपूर्ण स्टेज को पहुंचता है। कैसी परिपूर्ण स्टेज? जिस आत्मा की पूर्णता की स्टेज में आत्माओं का बाप और बाप का बड़ा बच्चा बल नंबर की आत्मा दोनों एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य, क्या बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। शिव बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं उस लिंग रूप में निराकारी स्टेज में, क्योंकि बच्चा ही बाप समान बन जाता है। और पांच तत्वों का संघात रूप वो सार, जिसे प्रकृति का सार कहा जाए, जिस सत्व का सार का कभी नाश ही नहीं होता, जो प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है साकार रूप में, जगदम्बा के रूप में, तो सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। उसको टाइटल मिलता है असुर संहारिणी। कलयुग के अंत में सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है, सब असुर बन जाते हैं। उन सब असुरों का विनाश अर्थात उनके शरीरों का विनाश कर देती, आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, ब्रह्म वाक्य में बोला है दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश काहे से होगा? भूकंप से होगा। भू माने पृथ्वी, वो पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसमें पांचों ही जड़ तत्व समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं धरणी माता, उस धरणी माता में जल देवता भी है, वायु देवता भी है, अग्नि देवता भी है, वैक्यूम के रूप में आकाश भी है, पांचों तत्वों का संघात पृथ्वी में है। इसलिए बताया ये पांचों ही तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश रावण के पंजे में ऐसे फंस जाते हैं कलयुग के अंत में कि शास्त्रों में चित्रों में दिखाते हैं कि पृथ्वी जल वायु अग्नि देवता रावण की पार्टी से बने हुए थे। एक उंगली का इशारा करता था, स्विच दबाया और हवा चालू, स्विच उठाया और हवा बंद। वो रावण के इतने पंजे में फंसे हुए थे कि दास दासी के रूप में काम करने लग पड़े। पृथ्वी माता भी रावण के चंगुल में सीता के रूप में बंध गई। फिर क्या होता है? जब वो धरणी माता विकराल रूप धारण करती है तो महाकाली बन जाती है, चाहे रावण हो, रावण के 10 सिरों में से कोई सिर हो, 5 विकारों रूपी रावण हो, या मंदोदरी हो, मंद बुद्धि वाली, सबको धराशायी कर देती है। उसी माता का राज्य चलता है इस सृष्टि पर, जिसका गायन सिखों में आज तक है। राज करेगा खालसा, ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला संगठन बना था, पहली ब्राह्मणों की दुनिया बनी थी, उस ओम मंडली में भी उसी माता का वर्चस्व था। और जब ब्राह्मणों की दूसरी दुनिया बनती है तो उस दूसरी दुनिया में भी वही माता विकराल रूप धारण करने वाली बनती है अपनी बड़ी बच्ची के द्वारा। है बाप की बड़ी बेटी का नाम क्या है? माया बेटी। माया बेटी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है, एडवांस पार्टी में जाने वाले, उनके योग बल से इतना तंग आ जाती है कि स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म बुद्धि होने से तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती, और बुद्धि की प्रबलता के आधार पर वो मां से हाथ मिलाती है, परम पुरुष की परा प्रकृति से हाथ मिलाती है, और उसकी बुद्धि को घुमा देती, अपने पक्ष में कर लेती। उस प्रकृति माता का सहारा क्यों लेती धरणी माता का? है क्योंकि जानती है जो नई मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार का रचयिता बाप है, उसने अपनी सारी शक्तियां किसको तिरोहित की है? माता को। माता बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिवान है, बड़ी शक्तिशाली होने के कारण उसका नाम है प्रकृति। कृति माने रचना। बाप की कैसी रचना? प्रकाष्ठ रचना। उससे पावरफुल कोई रचना हो ही नहीं सकती। जो बाप की बड़ी बच्ची है माया, माया बेटी, वो भी मां की गोद में खेलने वाली बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है?
बच्चा बुद्धि।
बच्चा बुद्धि। और वो बच्चा बुद्धि मां के मुकाबले ज्यादा पवित्र है। बच्ची है ना, तो तो माँ के मुकाबले ज्यादा पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। तो बुद्धि पवित्र होने के कारण वो युक्ति निकाल लेती है और माता को बरगला लेती। आज भी ऐसे ही है, माताएं उतनी बुद्धिमान पढ़ी लिखी नहीं होती हैं जैसी आजकल की बच्चियां बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि भी पवित्र होती है और आज तो बच्चियां हों चाहे बच्चे हों दोनों ही माता को बरगलाते हैं। माताएं बिचारी आधीन हो जाती क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पहला पत्ता कृष्ण की आत्मा है गीतापति भगवान बन के बैठ जाता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान मानते हैं या नहीं मानते? सबसे जास्ती माताएं मानती हैं कि भाई लोग मानते हैं? माताएं मानती। माताएं कृष्ण के नाम से दीवानी हो जाती है। कृष्ण बच्चे को ही अपना सर्वे सर्वा मान बैठती है और कृष्ण बच्चे के हाथ में पूरे परिवार की बागडोर आ जाती है। वो माता को जैसे चाहे वैसे चलाता है। तो षष्ठी वृक्ष के जो बड़ा बच्चा है उसका ये हाल है, तो दूसरे जो 500 करोड़ बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा? वो अपनी माँ का को अपने अंडर में करेंगे या नहीं करेंगे? अपने आधीन बनाकर चलते हैं कि माता के आर्डर पर चलते हैं? आधीन बनाकर चलते हैं। तो देखो शिव बाप ने जो परंपराएं डाली इस संसार में वो परंपराएं श्रेष्ठ परंपराएं हैं। उनको कहेंगे श्रीमत के आधार पर चलाई गई परंपराएं। बाकी जो मनुष्य मात्र हैं सृष्टि के कोई भी पत्ते हों 500-700 करोड़ में से वो सब देह अभिमानी, क्योंकि जो पहला पत्ता कृष्ण बच्चा है वो भी देह के अंग का रस ले रहा है या नहीं ले रहा है? मनुष्य सृष्टि में सात्विक सतो प्रधान सतयुग की सृष्टि में वो भी ज्ञान इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है देह का अंग है जीवन में उसी का क्या ले रहा है? रस ले रहा है। देह विनाशी तो देह की इंद्रिय भी और उसका रस भी। तो आत्मा नीचे गिरेगी, कलाएं घटती होती जाएंगी या बढ़ेंगी? घटती चली गई। जब सृष्टि के पहले पत्ते का यह हाल है, गिरती कला की ओर जाना और सारी सृष्टि को गिरती कला की ओर ले जाना, तो देखो जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिताएं कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, वो धर्म पिताएं भी कभी उस कृष्ण वाली आत्मा जिसने संगम युग में माता का पार्ट बजाया था, ब्रह्मा का पार्ट बजाया था, उसकी गोद में खेली थी या नहीं खेली थी? मुखवंशावली बनकर के खेली थी या ब्रह्मा की मुखवंशावली बनकर खेली थी? कुखवंशावली बनकर खेली थी। और कुख देह का अंग है, कुख माने गोद। तो ये जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के प्रभाव में आने वाली भारत के सतयुगी नारायणी आत्माएं, नारायण नंबर वार बनने वाली आत्माएं, कम कला के नारायण बनने वाली आत्माएं द्वापर युग से द्वैतवादी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। जो जो धर्म पिताएं ऊपर से उतरते हैं, उन्हीं क्षीण होते नारायणों के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये नियम है, जितना ऊंचा धर्म पिता उतने ऊंचे देवात्मा में प्रवेश करेगा, ऊंचे ते ऊंचा धर्म पिता किस में प्रवेश करेगा? ऊंचे ते ऊंचे नारायण में प्रवेश करेगा। ऊंचे ते ऊंचा नारायण जो डायरेक्ट नर से उसी जीवन में नारायण बनता है, बाकी नारायण उसी जीवन में नारायण नहीं बनते, अगला जन्म लेकर के नारायण बनते। वो देहधारी धर्म पिताओं से, देवात्माओं से वर्षा लेते हैं राजाई का। और जो पहले नंबर का नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, वो देवात्माओं से राजा ही लेता है क्या? किससे लेता है? भगवान से राजा ही लेता है। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? जो आदि नारायण है वो ही सबसे जास्ती शक्तिशाली साबित होता है। परंतु वो आदि नारायण भी भारत नामधारी है, जिसमें वो परम पुरुष शिव प्रवेश करता है। अविनाशी धरणी है, क्योंकि परम पुरुष ऊंचे ते ऊंचा भगवंत उसमें प्रवेश करता है। जिसके ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो भारत देश माता के रूप में गाया हुआ है, क्योंकि वो परम पिता सुप्रीम गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आता है, तो जिस मनुष्य तन में भी प्रवेश करता है, उसका उससे काम निकालने के लिए क्या नाम देता है? ब्रह्मा। तो वो पहला परम ब्रह्म कहा जाता है, माता है। और माताओं में ये कमजोरी सदैव रहती है। क्या? कौन सी कमजोरी है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। क्या? जिसने आकर जो सुनाया उन्हीं के प्रभाव में आ गई। जैसे द्वापर युग से इब्राहिम आया, इब्राहिम के फॉलोअर्स आए, तो उनकी बातों में आकर के भारतवासी माताएं
कन्वर्ट हो गए। वो मात्र देश है ना, और धर्म पिताएं माता का रूप धारण नहीं करते, क्योंकि वो सब सहनशील माता के रूप में है या पिता है, हैं? पिता है। वो सहनशील माता का रूप धारण करने वाले नहीं है, इसलिए उनके धर्मखंड भारत जैसे मात्र प्रधान नहीं कहे जाते, पितृ प्रधान देश है। इसलिए वहां जन्म लेने वाले जो भी फॉलोअर्स हैं वो अपने धर्म के बड़े कट्टर होते हैं, दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों को छुएंगे भी नहीं, दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते। ये तो भारतवासी माताएं ही हैं, परम ब्रह्म की औलाद, जो फट से दूसरों की बातों में आ जाती है। और आधीन हो जाती है। इसलिए हिस्ट्री उठा के देखें 2500 साल की, भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, दूसरे धर्म के कभी कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए भारतवासी इतने पुराने होते हुए भी, पुराना देश होते हुए, पुराना धर्म होते हुए, पुराना राज्य होते हुए भी, भारतवासियों की दुनिया में संख्या कम है या ज्यादा है? हैं? कम है। यूनिटी नहीं बना सकते, भारत के राजाओं का संगठन टूटता ही रहा, आपस में लड़ते ही रहे, और भारत का नाम बाला नहीं कर सके, भारत का नाम विदेशों में बदनाम हो गया, क्योंकि ये भारत की माताएं हैं। नंबर बार गिरती कला का पार्ट बजाने वाली, देह अभिमान में रहने वाली, कि देह भान में आकर के देहधारी धर्म पिताओं के प्रभाव में आ गई, और भारत के राजाएं और ही जास्ती पतित होते रहे। नहीं तो भारत की धरणी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धरणी है। जिस देश रूपी धरणी में ऊंचे से ऊंचा भगवंत निराकार आत्माओं का बाप प्रवेश करते, परंतु जो भारतवासियों में मूल है माता परम ब्रह्म, वो भी देह अभिमान के आधार पर पत्थर बुद्धि के रूप में, पत्थर के रूप में पूजी जाती है या चैतन्य आत्मा के रूप में पूजी जाती है? पत्थर का लिंग। उस तन में निराकार शिव प्रवेश करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं ज्ञान के आधार पर, और अव्वल नंबर पुरुषार्थी के रूप में वो जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, जो बाप का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर वापस जाऊंगा, नंबर वार बनाऊंगा, तो वो बच्चा अव्वल नंबर में बाप समान निराकारी शिव ज्योति बिंदु बनता है, जिसकी पूजा होती है भक्ति मार्ग में। नहीं तो शिव बाप का कहना है, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो, तो तुम्हारी ही पूजा होती है। तो बताया ये ब्राह्मणों की नई दुनिया बनेगी तो ये पुरानी दुनिया का क्या होगा? विनाश हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया में जो ब्रह्मा की तीसरी बार की रचना है, ब्राह्मणों की सृष्टि तीसरी बार रची गई, कब से? तीसरी बार संक्षेत्र से रची गई, जिसके लिए बोला तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लेते हो, तो 76 से लेकर के 2017 तक ये 40 वर्ष पूरे होते हैं। 40 वर्ष पूरे होते होते तुम्हारी छोटी सी राजधानी तैयार होती है, परंतु उसे कंप्लीट राजधानी नहीं कहेंगे, कोई राजा का छोटा राज्य स्थापन होता है तो दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं, राजाएं हैं, राज्य हैं, वो उत्थान होते हुए उन्नति को पाते हुए उस छोटे राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये छोटी राजधानी स्थापन होती है 2017 के बाद 2018, कितने बचेंगे? 18 8 बचेंगे। कैसे? चौथी दुनिया तैयार होती है ब्रह्मा के द्वारा। कैसी दुनिया? अविनाशी दुनिया, क्योंकि इस ब्राह्मणों में जो ज्ञान यज्ञ रचा जाता है आदि से, उस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि शंकर भी अधूरा पुरुषार्थी है। जब तक 40 वर्ष पूरे न हो तब तक शंकर का भी चरित्र की यादगार चित्र पट्ट में पड़ा हुआ सोता हुआ दिखाया जाता है या जागता हुआ? कौन सी नींद में सोता हुआ? अज्ञान नींद में सोता हुआ। तब तक पत्थर बुद्धि ही है, और जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होती तब तक पत्थर बुद्धि ही रहेगा, या पारस बुद्धि बनेगा है। पूरी राजधानी स्थापन नहीं होती है तब तक, पूरी राजधानी स्थापन होना माने राजा की धारणा शक्ति उपस्थित हो जाना। राज्य का आधार कौन बने? राजा की धारणा शक्ति। क्या धारणा शक्ति? ज्ञान को धारण करने वाली शक्ति, ज्ञान को समझ कर धारण करने वाली शक्ति, या ज्ञान को सुनकर धारण करने वाली शक्ति? समझ कर क्या धारण करने वाली शक्ति? नहीं, ज्ञान सुन भी लिया, सुनाई भी लिया, ज्ञान समझ भी लिया, दूसरों को समझाने योग्य भी बन गए, लेकिन स्वयं पवित्र नहीं बने। स्वयं ज्ञान ज्ञानेंद्रियों में नहीं आया, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान नहीं समाया ब्राह्मणत्व का। जो ब्राह्मणों के जीवन का सार है, ब्राह्मण पवित्र होते हैं, इसलिए भारत की हिस्ट्री में ब्राह्मणों को राजाएं भी पूजते थे, राजगुरु बनाकर पूजते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों में वो पवित्रता होती थी। पौराणिक हिस्ट्री में दिखाते हैं कि महाभारत में चाहे कौरव हो, चाहे यादव हो, चाहे पांडव हो, एक गुरु था सफेद दाढ़ी मूंछ वाला। कौरवों की सभा में भी जब जाता था तो सब उसको मानते थे। कौन था? है भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य।
वेद व्यास का नाम सुना है? वो व्यास जब सभा में उपस्थित होता था तो सभी उसके सामने झुकते थे। वो था पक्का ब्राह्मण। वेदों में भी जिसका नाम प्रसिद्ध है, वेद व्यास, और वेदों में भी जो पहला शास्त्र है, जो गीता शास्त्र कहा जाता है, उस गीता शास्त्र में भी उसी का नाम है, वेद प्रसादात। ये गीता ज्ञान किसके प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो उस शास्त्रकारों की दुनिया में वो सर्वोपरि है, बड़े से बड़ा ज्ञानी माना जाता है। जिसका नाम दिया गया भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जीवन भर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। ऐसे नहीं ये संगम युग की बात है, संगम युग में तो है ही, जब से बाप को पहचाना तब से लेकर जीवन पर्यंत ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, दूसरा कोई धंधा नहीं। और शूटिंग पीरियड में जो लगातार ज्ञान की रोशनी में लगा रहेगा, वो ब्रॉड ड्रामा में भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहे, चाहे वाचा के आधार पर, चाहे शास्त्रीय आधार पर, साहित्य में भी वाल्मीकि के रूप में जन्म लेगा द्वापर में, या कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेगा तो भी साहित्यकारों के बीच में शिरोमणि का पार्ट बजाएगा, हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा, क्योंकि बोला है ब्रह्म वाक्य शास्त्रों में अपनी अपनी जीवन कथा कहानी लिख दी है। क्या कहा? द्वापर में वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, उस रामायण में किसकी कथा कहानी लिख दी है? अपनी माने राम की कथा कहानी है। और कलयुग में आज से 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी, उस रामायण शास्त्र में किसकी कथा कहानी लिखी? राम की लिखी। तो तुलसीदास की आत्मा हो या वाल्मीकि की आत्मा हो, कौन सी आत्मा साबित होती है? राम की आत्मा साबित होती है। इसी तरह युद्ध क्षेत्र में भी, साहित्य क्षेत्र में भी सर्वोपरि पार्टधारी हीरो पार्टधारी और युद्ध क्षेत्र में भी हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भारत के राजाएं हुए हैं जिनकी राजधानी भले छोटी सी थी, छोटा राज्य था, हजारों की तादाद में भी कभी मिलिट्री थी कभी नहीं थी, फिर भी लाखों की तादाद की मिलिट्री वाले राजाओं के साथ टक्कर लेता था और सदा जीतता था, कभी हार नहीं खाता था। ऐसे राजाएं हुए या नहीं हुए? कौन कौन? महाराणा प्रताप भी हुए और शिवाजी हुए, और भी राजाएं हुए। तो बताया कि हर क्षेत्र में हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाता है और सत्य के आधार पर अडिग रहता है, दुनिया के दूसरे धर्मों के विदेशी आक्रांताएं लाखों लाख की सेना लेकर आते थे और भारत में आकर पूंछ दबा के भाग जाते थे। चाहे वो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री हो, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे कोई विश्व का विजेता विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाला हो, कोई भी उस हीरो पार्टधारी से टक्कर नहीं ले सका। परंतु युद्ध करने में शरीर का खून दोनों तरफ के योद्धाओं का बहता है, या एक तरफ बहता है?
दोनों।
खून शरीर का बहता है तो शरीर कमजोर हो जाता है या नहीं हो जाता? ऐसे ही आत्मा का खून है संकल्प शक्ति, ये संकल्पों का खून जो बहता है वो भी संकल्पों के युद्ध से बहता है। ये यहां संगम युग में शूटिंग की बात है। लगातार युद्ध रहता है क्योंकि विश्व की बादशाही का सवाल है। दुनिया में जितने भी राजाए हुए वो कोई भी विश्व के बादशाह नहीं बने क्योंकि हिंसा का आधार था। ये तो अहिंसक बादशाही स्थापन हो रही है और अहिंसा के आधार पर ही सारे विश्व की बादशाही ली जा सकती है। परंतु लड़ाई के बाद ही राजाई स्थापन होगी या बिना लड़ाई के राजाई स्थापन हो जाएगी? पहले लड़ाई फिर राजाई। वो भले विश्व की राजाई हो, सारे विश्व की राजाई होगी तो सारे विश्व के राजाएं राज्य, सारे राज्यों की मिलिट्री, सारे विश्व के धर्म पिताएं धर्मावलंबी युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे ही मान जाएंगे है?
युद्ध करेंगे
भले संकल्पों का युद्ध हो, वाइब्रेशन का युद्ध हो, वाचा का युद्ध हो, लेकिन युद्ध तो जरूर करेंगे। तो भारत के शास्त्रों में जो इसी संगम युग की यादगार शूटिंग की यादगार हैं, लिखा है कि दुनिया में एक ही शख्सियत ऐसी हुई है, एक ही व्यक्तित्व का नाम है जिसने जीवन में कभी भी हार नहीं खाई। क्या नहीं? क्योंकि बाप का वाक्य है महावाक्य, ब्रह्म वाक्य है, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार। माने जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन से बाप का बच्चा बना, निश्चय रूपी जन्म लिया, उस दिन से लेकर के महामृत्यु के समय तक भी वो आत्मा कोई भी प्रकार के युद्ध में, लेकिन युद्ध अहिंसक होना चाहिए, बाहुबल का नहीं। जहां बाहुबल की नौबत आती है वहां ब्रह्म वाक्य है, भाग जाना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्र में प्रसिद्ध है, भस्मासुर ने आक्रमण किए, पीछे पड़ गया भस्म करने के लिए, तो क्या किया है? सारी दुनिया में भागते भागते फिरे, पकड़ में ही नहीं आए। कहां की शूटिंग की बात है, ये सारी बातें संगम युग की हैं। संकल्पों का युद्ध भले होता रहे, वाइब्रेशन का युद्ध होता रहे, भयंकर से भयंकर वाचा का युद्ध होता रहे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, जो यज्ञ के आदि में भी हुआ था। धोबी घाट की बात को लेकर के सारी दुनिया ब्रह्मा बाबा के तरफ हो गई, क्योंकि ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि थे, ज्ञान की गहराई को समझ ही नहीं सकते, तो उन्होंने तो विरोध आरंभ से ही किया। ब्रह्मवाक्य मुरली में ही ब्रह्मा के द्वारा बुलवाया गया, उन बच्चों को कितना समझाते थे विकार में मत जाओ, फिर भी नहीं माना। अब देखो पति तो हो गए, फिर ये भी मुरली में बोल दिया, जो एक बार जीवन में ब्राह्मण बनते हैं, बल शरीर छूट जाए लड़ते लड़ते, तो भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे या नीच कुल में जन्म लेंगे। फिर ये भी बता दिया, राम फेल हो गया, तो बाप का बड़ा बच्चा अगर फेल हो जाए तो कैसा भी बच्चा हो, उस बच्चे को डाडे की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो धर्म पिताओं का बाप तो हुआ प्रजापिता, और प्रजापिता का बाप हुआ कौन, डाडे, कौन, शिव। तो शिव आकर के उस बच्चे को अपना वर्षा दे देते हैं, जाओ ये ले जाओ ज्ञान के बाण, ये ले जाओ पुरुषार्थ रूपी धनुष, कमाओ और खाओ, इस ब्राह्मण परिवार में तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तू बड़ा बच्चा है, कमाएगा खाएगा कि नहीं, हैं? कमाएगा खाएगा, ज्यादा पावरफुल बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। तो दोबारा जन्म लेकर के वो आत्मा आती है तो बुद्धि रूपी तर्कस में ढेर के ढेर ज्ञान के बाण जो बाप से वर्षे में मिलते हैं, और पुरुषार्थ रूपी वो शिव का धनुष लेकर आती है, जिस धनुष को रावण हिलाए भी नहीं सका, जिस धनुष को पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, पुरुषार्थ रूपी चाप कहो, पुरुषार्थ रूपी जहाज कहो, जो दुनिया में दूसरे धर्मों में भी गायन है, नानक चाप जहाज। गुरुओं ने अपने को भगवान मान लिया कि नानक चाप जहाज, जे ही चढ़ी उतर है पार नर, संसार के मनुष्य उस जहाज पर चढ़ करके विषय सागर के पार चले जाएंगे। लेकिन नहीं, भारत के शास्त्रों में शंकर के लिए गायन है, शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरे पारनर। ये शरीर रूपी रथ कहो, शरीर रूपी चाप कहो, शरीर रूपी जहाज कहो, वेद वाक्य मुरली की भाषा में क्या नाम है जहाज का? चंद्रकांत वेदांत जहाज, जिसमें चंद्रमा की कांति भरी हुई है। कांति माने रोशनी, चंद्रमा के मुख से जो ज्ञान निकला वो सारा ज्ञान उसमें भरा हुआ है। वेदों शास्त्रों को भी अंत करने वाला वो ऐसा जहाज है जिस पर चढ़ करके, जिसका आधार लेकर के दुनिया के सारे मनुष्य मात्र इस विषय सागर से पार चले जाएंगे। कबीर दास जी ने अपने ऊपर उठा लिया, चदरिया भीनी भीनी रे, चदरिया माने शरीर रूपी चदरिया, सो चादरे सुर नर मुनि ओढ़ी, देवताओं ने भी ओढ़ी, सोलह कला संपूर्ण कृष्ण जैसे देवता ने भी ओढ़ी राधा रूपी चदरिया। फिर नीचे गिरे या ऊपर उठे?
नीचे गिरे।
सो चादर सुर माने देवता, सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ी के मैली की नी चदरिया, और दास कबीर ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। वाह भाई, ये क्या बात हुई? क्या कबीर दास जी भगवान हो गए जिनके संग के रंग में आकर के शरीर रूपी चद्दर, शरीर रूपी कपड़ा जो भीना भीना हुआ है, बहुत सुंदर है, पारदर्शी है, वो चदरिया को कोई दाग नहीं लगा? अरे क्या कबीरदास भगवान थे?
नहीं।
भगवान तो नहीं थे, ये है भगवान का गायन। वो निराकार ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिस साकार तन में प्रवेश करता है, वो 16,000 चदरिया ओढ़ता है, और फिर भी ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया। मनुष्य गुरु ऐसा ओढ़ते हैं उन पवित्र रूपी कन्याओं रीक रूपी चदरिया को कि मोटी कमर वाली माता बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं। भ्रष्ट बनाए देते हैं। ये तो एक का गायन है जो अमोघ वीर्य गाया हुआ है। क्या अमोघ वीर्य का मतलब क्या है? मतलब है कि वो पार्टधारी बिच्छू टिंडन वाली सृष्टि पैदा नहीं करता। आज कैसी सृष्टि पैदा हो रही है? जो बच्चे पैदा होते हैं वो माता पिता को ही दुख देते हैं। जैसे बिच्छू के पेट से बच्चे पैदा होते हैं तो पेट फाड़ के जन्म लेते हैं। पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो हॉस्पिटल में जाकर के पेट फाड़े जाते थे?
नहीं।
आज पेट फाड़ करके बच्चे पैदा होते हैं। ये बच्चों का पूर्व जन्म का हिसाब ही ऐसा है। तो बताया कि जो भगवान का पार्ट है वो ऐसा श्रेष्ठ पार्ट है कि हजारों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है और वो संबंध गोप गोपियों के रूप में गाया जाता है। कैसा संबंध? क्या मतलब? गुप्त संबंध। अरे दुनिया में कौन सा ऐसा गुप्त संबंध मनुष्यों का होता है इंद्रियों का जो गुप्त ही रखा जाता है? संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। कौन सा संबंध होता है? है? भाई बहन का, बाप बेटी का, अरे मां बेटी का, कौन सा संबंध गुप्त रखा जाता है? है? पति पत्नी का संबंध गुप्त रखा जाता है। तो जो संबंध मनुष्य मात्र में गुप्त रखा जाता है उसको कहा जाता है गुप्त संबंध, गोपनीय। वो राज की बात है। बच्चा बुद्धि उस संबंध को नहीं समझ सकते। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी भगवान ने आकर के कैसा गुप्त संबंध जोड़ा था गोप गोपियों के साथ जो नाम गोप गोपी हुआ। वो संबंध गुप्त रहा। वो 16,000 के परिवार ने जाना, परिवार के उन भांतियों ने जाना जिन गोप गोपियों को वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। वरदान मिला या नहीं मिला? तो 16,000 की बात नहीं है, वो ईश्वरीय योगियों का परिवार जो 16,000 की संख्या का है, राज परिवार कहा जाता है। 84 जन्मों में कहीं न कहीं राजा रानी जरूर बनते, भले एक जन्म में कहीं बने, बनेंगे जरूर। तो वो ईश्वरीय राजयोगी परिवार इतना श्रेष्ठ है जिस परिवार से स्वाधीन राजाएं निकलते हैं, जो अपने राज्य में सदैव स्वाधीन रहते हैं। ये राजाई, ये कंट्रोलिंग पावर दुनिया का कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये राजाई कंट्रोलिंग पावर भगवान बाप ही सिखाता है। और किस आधार पर? आधार वही है। पूछा जाए द्वापर युग से देव आत्माएं कैसे पतित बने? संग के रंग से पतित बने। एक के संग के रंग से पतित बनी या अनेकों के धर्म से, अनेकों धर्मों के धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से पतित बनी। अब क्या किया जाए? उस एक को पहचाना जाए जो दुनिया का बड़े से बड़ा राजयोगी है। उस शास्त्रों में योगी ईश्वर का टाइटल मिला हुआ है, योगी राज का टाइटल मिला हुआ है भगवान को, परंतु अनजाने में अज्ञानता के कारण कृष्ण का नाम डाल दिया, और जिस कृष्ण का नाम डाला है वो कृष्ण बच्चे के रूप में पूजा जाता है। अरे बच्चा क्या जाने संग का रंग का राज क्या होता है। जो ऐसा संबंध है संग का रंग छोड़ने वाला, इतना गहरा संग का रंग छोड़ता है कि स्त्री शरीर छोड़ती है तो जीवन भर जिस पुरुष का संग किया है, जिस पुरुष से सुख लिया है, वो अंत समय में याद जरूर आ जाता है और रिजल्ट क्या होता है, अंतमते सुगते हो जाती है। स्त्री ने पुरुष चोले को याद किया अंत समय में तो काहे का जन्म मिलता, पुरुष का जन्म मिलता, और पुरुष भी इसी तरह जीवन भर स्त्री चोले से सुख लेता है तो अंत समय में क्या याद आता है, स्त्री चोला याद आ जाता, अंतमते सुगते। पुरुष को कौन सा जन्म मिलेगा, स्त्री का जन्म मिलता। तो देखो इस गुप्त संबंध के संग का रंग इतना गहरा है कि वो अगले जन्म तक छाप मन बुद्धि रूपी आत्मा में रह जाती। यही राज है जो बाप आकर के समझाते हैं कि एक के संग के रंग में रहेंगे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का संग हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का संग हो, संग का रंग जरूर लगेगा और याद जरूर आएगा। रसगुल्ला कब याद आता है, खाया होता है तो याद आता है, जिसने खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको याद आएगा नहीं याद आएगा। तो बताया ये एक का संग का रंग ऊंचा उठाता है, लेकिन कौन एक, ऐरा गैरा नथु खैरा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी एक पार्टधारी का संग का रंग ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा, है नीचे गिराएगा, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण कृष्ण है वो खुद ही नीचे गिरता है। तो दूसरे पत्तों का तो कहना ही क्या जो बाद में आते हैं। तो मनुष्य सृष्टि वृक्ष के उस ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी बीज को पहचानने की बात है, और वो बीज की पहचान कौन देगा, है, है? कौन पहचान देगा,
वो स्वयं देता है, वो स्वयं अपनी पहचान देता है।
कौन देगा,
वो स्वयं देगा अपनी पहचान,
बाप या
दादा। शिव बाप पहचान नहीं देता है, शिव बाप पहचान देता है, कितने साल हो गए पहचान लेते लेते, अरे बताओ। शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के जो ब्रह्म वाक्य बोले वो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए, 80 साल हो गए। परमानेंट कोई ने बाप को पहचाना है? आज पहचानते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को पाते हैं। यज्ञ के आदि में खून से लिख करके देते थे, फिर उनका भी हाल बुरा हो गया, अभी सरकारी कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, कोई कोई नोटरी भी कराते हैं कोर्ट के सामने। आज निश्चय बुद्धि बन करके निश्चय पत्र लिख कर देते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत हो जाती है। तो बताओ, कोई छाती ठोक करके कहेगा कि माया के फाइनल पेपर में हम फेल होने वाले नहीं हैं, हम बाप को भूलने वाले नहीं हैं, हम अमर बनकर रहेंगे, दुनिया मारी जाए तो मारी जाए, कोई है तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। अरे माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं हुआ। ये माया ने प्रकृति रूपी महाकाली से हाथ मिलाया हुआ है। जो महाकाली कोई भी असुर को छोड़ने वाली नहीं है। छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। सबकी भुजाओं को काटेगी। जो भगवान की सहयोगी विशेष भुजाएं होंगी उन भुजाओं को भी काट करके अपनी कमर का लज्जा बचाएगी। कौन? महाकाली। अपनी लज्जा बचाएगी। उन सहयोगी बाप की भुजाओं के द्वारा ऐसे बुलवाएगी, संसार के सामने ऐसे कहलवाएगी कि माता सच्ची है महाकाली और वो झूठा है। माता की लाज बचाएगी, बचाएंगी वो भुजाएं, और बाप की लाज गुमाएंगी, बाप को नंगा कर देंगे। लेकिन बाप तो पहले से ही खुला खेल फरक्काबादी, उसको क्या नंगा करेगा कोई? अरे उसका तो नंगा नाच प्रसिद्ध है। जब वो नंगा नाच नाचेगा, जिसके लिए अभी लास्ट संदेश में बोला ब्रह्मा बाबा ने कि इस बच्ची गुलजार के द्वारा तो ऐसा नंगा नाच नहीं नाच सकते, कोई पुरुष चोला है तीसरा रथ जिसके द्वारा ऐसा डांस होगा ज्ञान का कि सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जावेंगे, कोई का कुछ भी इस दुनिया में छुपा हुआ नहीं रहेगा। कोई कितना भी अपने पोता मेल को छुपाए छुप नहीं सकेगा। इसलिए बोला देवान को छोड़ दो, ये देह अहंकार छोड़ो, नहीं तो मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। जैसे मच्छर में कोई देह अभिमान देह का टुकड़ा नहीं होता, ऐसे ले जाऊंगा। तो बताया नई दुनिया आने वाली है तो विनाश भी जरूर होना है, और देह अभिमानियों का विनाश होना है या आत्माभिमानी का विनाश होना है, और अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोटों में से को एक है। क्या बोला मुरली में? हैं? अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई पोतों में एक है, जिसके लिए बोला अब देखेंगे राख कौन बनते हैं देह अभिमान भस्म करके, और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक लाखों पुरुषार्थियों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो एक के निकलने की बात बताई या दो चार के निकलने की बात बताई? एक की बात बताई। तो एक रहेगा, बाप रहेगा सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, तो नई मनुष्य सृष्टि बनेगी। या बाप भी नहीं रहेगा, बीज भी नहीं रहेगा, तो नई सृष्टि मनुष्य की बन जाएगी। एक बाप जरूर रहेगा, भले माया प्रकृति रूपी माता का हाथ मिला करके सबके गले कटवाए दे, लेकिन एक का गला नहीं काट सकती। एक साकार शरीर से भी रहेगा और आत्मिक की स्थिति में भी रहेगा, और उस एक के द्वारा फिर से नए सृष्टि रूपी वृक्ष की स्थापना होगी। फिर वो ही आदिकल्प की तरह राधा कृष्ण का जन्म होगा, जो शूटिंग पीरियड में रिहर्सल काल में शास्त्रों में दिखाया गया, सारी सृष्टि पर जलमयी हो गई। फिर कौन आया सागर में है? अरे पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया। अब बताओ ऐसे हो सकता है क्या कि सारी सृष्टि में जलमयी हो जाए और कृष्ण बच्चा पीपल के पत्ते पर टपक पड़े? छोटी मोटी नाव, इतनी हल्की नवैया, और उस पर बच्चा बिठैया और वो नवैया डूबैया न हो। अरे ये कवियों की भाषा है, अलंकारिक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है, उसका गहरा अर्थ होता है। पीपल का पत्ता माना ऐसी हल्की फुल्की पार्ट बजाने वाली आत्मा जो बहुत हलचल में आती है। दुनिया के जितने भी वृक्ष हैं, उनमें कौन से वृक्ष का पत्ता है जो थोड़ी सी हवा भी हिलेगी डुलेगी तो पत्ता जोर से डोलता है? पीपल का पत्ता। गायन है, पीपल पात सरिसमन डोला। क्या बुद्धि के लिए नहीं बोला और कोई इंद्रिय के लिए नहीं बोला, मन के लिए बोला। ये मन रूपी ब्रह्मा है, उसे मन कहो दिल कहो। बाप का दिल है उस बच्चे के ऊपर, साकार मनुष्य सृष्टि का बाप और उसका साकार बच्चा। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण उस बच्चे के रूप में बोला कि वो किस पत्ते पर आता है। क्या नाम दिया? पीपल। उस वृक्ष को कहते हैं वो वृक्ष पीपल का वृक्ष। क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव कहते हैं उसमें भूत प्रेत निवास करते हैं, इसलिए उसकी लकड़ी को कभी नहीं जलाना चाहिए। वास्तव में वो ब्रह्मा रूपी आत्मा की बात है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस साकार चोले में फीमेल में प्रवेश करता है वो पीपल के पत्ते के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। रुद्रमाला का मणका तो है लेकिन सबसे कमजोर मणका है या पावरफुल मणका है?
कमजोर
लास्ट मणका है, इसलिए बहुत हिलता डुलता है। ऐसा पत्ता रूपी आत्मा जो लंबे समय तक बाप के साथ रहती है, आपने एक वृक्ष देखा होगा, वो वृक्ष बहुत बढ़ जाता है और उस वृक्ष में अनेक प्रकार के और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं। कौन सा वृक्ष है?
खजूर बहुत बढ़ जाता है,
बढ़ जाता है, बढ़ बरगद, उसमें और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं। पीपल का पेड़ पैदा हो जाता, नीम का पेड़ पैदा हो जाता, तो एक वृक्ष में ही अनेक वृक्ष, ये वैरायटी धर्मों का वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। तो जो पीपल का पत्ता है वो उस आत्मा की यादगार है जो रुद्रमाला में सबसे कमजोर मणका है, थोड़ा सा माया का झोंका आता है और हिल जाती है। भले उस पत्ते ने लंबे समय तक बाप का साथ निभाया है, बाप का संग का रंग लिया है, फिर भी माया का झोंका आता है और हिल जाती है, इतनी जोर से हिलती है कि बाप का साथ ही छोड़ जाती।
दिखाते हैं भव सागर में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है और उस बाढ़ में देह अभिमान की मिट्टी मिल जाती है, बाढ़ में क्या होता है, देह अभिमान की मनुष्यों की मिट्टी मिल जाती है,
चुप करो ना,
भव सागर के बीच में वो पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, इसकी यादगार है।
नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, वो ऐसी आत्मा है, ध्रुवपति है, महाभारत में उसका नाम ध्रुवपति, उसका बिगड़ा हुआ राव और नाम द्रौपदी है, उसका पद निश्चित है महालक्ष्मी के रूप में। नारायण के साथ जो जन्म जन्मांतर का साथ निभाने वाली लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के भाव स्वभाव संस्कार में जब महाकाली का भाव स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। जैसे संगमयुगी नारायण और सतयुग का नारायण फर्स्ट, दोनों आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में कंबाइंड पार्ट बजाते बजाते दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो लास्ट में उनको कहते हैं महानारायण। क्या? चार भुजाओं वाला। ऐसे ही चार भुजाओं वाली क्या दीपावली पर पूजी जाती है। कहते हैं दीपावली पर राम का राज्यारोहण हुआ था। कब हुआ था? दीपावली कब हुई थी? दशहरा के बाद। दस शिरों वाला रावण उसके शिरों का हरण हो चुका था। उसके बाद आती है दीपावली, जिस दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन होता है। वो रिहर्सल अब हो रही है। वो रिहर्सल शूटिंग अब होने वाली है कि महाकाली सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर राज्य करेगी, सबका गला काटेगी, सबको निश्चय बुद्धि बनाएगी, एक बाप को छोड़कर, महाकाल को छोड़कर, जगदम्बा जगत पिता को छोड़कर सबके गले काट दे। तो दिखाया है मत्स्यावतार, एक भगवान का ऐसा अवतार दिखा दिया है भक्ति मार्ग में जो मछली का अवतार दिखाया। कहते हैं छोटे रूप में उसको लिया गया था, छोटी सी मछली चुल्लू पानी में आ गई, फिर वो बढ़ते 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 इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर गई कि सागर में उसको जब फेंका गया तब उसकी बाढ़ बंद हो गई। यही दिखाते हैं कि जब नई सृष्टि बनी थी तो एक शरीर रूपी नवैया जो मछली के रूप में माछले के रूप में दिखाई गई, उसके सींग पर वो नई सृष्टि की 108 आत्माएं बीज रूप में बैठी हुई थी और उससे नई सृष्टि का जन्म हुआ। पीपल का पत्ता भी दिखाते हैं, पहले पहले वो पीपल का पत्ता समंदर में जब लहरें आती हैं तो डूबेगा या नहीं?
नहीं
डूबेगा। डूबता हुआ दिखाई पड़ता है या नहीं? दिखाई पड़ता है। डूबता है फिर उछलता है, फिर डूबता है फिर उछलता है। तो लोग समझते हैं कि ये डूबा कि डूबा, लेकिन वो डूब नहीं सकता। उसका पार्ट ऊंचे से ऊंचा है जो विष्णु के रूप में बायां अंग बायां हाथ दिखाया गया है, सबसे नीचे का हाथ, उस हाथ में कौन सा फूल दिखाते हैं? कमल का फूल। क्या मतलब हुआ? कि कीचड़ की दुनिया में रहती है, विकारियों के बीच में रहती है, फिर भी वो विकारों में उसकी बुद्धि डूबती नहीं है। इसलिए जो चित्र बनाए जाते हैं सरस्वती जगदम्बा के कॉलेजों में, विद्यालयों में गेट पर छोटा सा ताक बनाते हैं, उसमें जगदम्बा की मूर्ति रखते हैं, और वैसे भी महाकाली के चित्रों में मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है? है हाँ, कि कैसे भी कीचड़पट उठाने वाले बच्चे हैं, उनके संग के रंग में रहती भी है तो भी बुद्धि से कमल फूल के समान ऊपर आम रह करके रहती है। वो डूबने वाली नहीं है, उसका पार्ट है, और वो पार्ट विनाश का कार्य। वास्तव में तीन मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति के सिर पर है? शंकर के ऊपर है जिम्मेवारी, लेकिन शंकर अपनी जिम्मेवारी किसको सौंपता है? असुर संहारिणी को सौंपता है, और वो असुर संहारिणी अकेली नहीं है, ढेर की ढेर भुजाएं हैं जो उसको सहयोग देने वाली है। तो बताया कि नई दुनिया बनती है तो पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला कोई प्रैक्टिकल पार्टधारी भी होगा या नहीं होगा? शंकर के लिए तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, माने करने धरने का काम इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के? है इंद्रियों से होता है, और विनाश का काम अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? तो शंकर क्या अपवित्र होता है? शंकर के मस्तक से तो मस्तक में ज्ञान का तीसरा नेत्र ही दिखाते हैं। वो तीसरा ज्ञान का नेत्र उसके जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण शंकर के जीवन में कभी भी वो तीसरा नेत्र गायब नहीं होता। गंगा गायब हो सकती है, चंद्रमा गायब हो सकता है, लेकिन तीसरा नेत्र कभी गायब नहीं होता। भले विषपाई दिखाया गया है, फिर भी विषपाई होते हुए भी बुद्धि में से ज्ञान कभी लोप नहीं होता। इसका मतलब इंद्रियों से रियल पार्ट बजाता है या नारियल का पार्ट बजाता है? वो पार्ट रियल नहीं है, रियल पार्ट उसे कहा जाता है जिस पार्ट में इंद्रियां आसक्त होकर के सुख भोगती हैं। इंद्रियों के जिस पार्ट में इंद्रियां अनासक्त रहे, एक निराकार ज्योति बिंदु की याद में रहे, तो उसे आसक्त कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं। मन को कंट्रोल करने की बात है, ये मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, जो मन रूपी बैल शंकर में प्रवेश होकर बैलबाजी कराता है, वही बैल है जो गले में बासुकी नाग के रूप में दिखाया जाता है। वसु का पुत्र वासुकी, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव, एक मात्रा बढ़ती है, तो ये वासुकी नाग है। ये कोई भी जीवन में नाग की तरह बिना विष पिए नहीं रह सकता। नाग जो है वो बहुत विकारी माना जाता है। कौन से विकार में? काम विकार में। और वो है नागों का राजा कौन? वासुकी। उसने जकड़ रखा है, गर्दन से जकड़ रखा है। ऐसे तो पांचों ही विकार दिखाते हैं। कमर में भी सांप दिखाते हैं, दोनों भुजाओं में भी क्रोध और लोभ की यादगार सांप दिखाते हैं, और मस्तक के ऊपर भी अहंकार की यादगार सांप दिखाते हैं। पांचों विकारों से जकड़ा हुआ है, लेकिन फांसी किससे लगती है? जिससे आदमी मर ही जाता है, है गले से लगती है। तो उस वासुकी नाग ने गले से पकड़ा हुआ है। नाग कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, वो बैल शंकर पर पुरुषार्थी जीवन में सवार होता है, या शंकर बैल पर सवार होता है पुरुषार्थी जीवन में?
बैल सवार होकर शंकर पर,
बैल शंकर पर सवार होकर पार्ट बजाता है। बैल माने मन, मन रूपी घोड़ा आत्मा को वशीभूत कर लेता है, फिर पुरुषार्थ करते करते अंत में ऐसी स्टेज भी आती है कि संपन्न पुरुषार्थी बनता है, निरंतर याद में रहता है। तो उस सर्प को, उस बैल को बैलबाजी करने का मौका मिलता ही नहीं। तब दिखाते हैं शंकर बैल पर सवार हो गया। कौन सी सवारी? बैल की सवारी दिखाते हैं। वो बैल जो मंदिर में भी यादगार में दिखाया है, कहां बैठा हुआ है? है नाली के सामने बैठा हुआ है, जलाधारी के सामने बैठा हुआ है। तो देखो, सूक्ष्म शरीर धारण करने पर वो आत्मा जब तांसी बनती है, उस समय ऐसा पार्ट बजाती है, प्रवेश हो करके, उसको कहते हैं अधूरा चंद्रमा। अज्ञान रात का अंधियारी रात फैलाने वाला चंद्रमा या ज्ञानी चंद्रमा? अज्ञानी। ये जो अज्ञानी चंद्रमा है, कृष्ण बच्चे की आत्मा, वो किसके प्रभाव में आ जाती है? है? अरे हाँ, कन्याओं माताओं के प्रभाव में आती है, परछाई में आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धरणी माता रूपी पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की सोल, जब ज्ञान सूर्य बाप और धरणी माता के बीच में आ जाता है, तो धरणी वासियों को चंद्रमा का जो परछाया पड़ता है धरणी पर, वो धरणी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वो समझते हैं सूर्य अंधेरे में आ गया, अरे सूर्य कभी अंधेरे में आ सकता है? हैं? जो चंद्रमा के प्रभाव में आ गई धरणी माता, उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्य कभी अंधेरा हो जाता, ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी का अंधियारा चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का वो भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में आ गया ना, जब परछाई में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपूर्ण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, अमावस्या जैसी रात हो जाती है। ये सही बात है क्या कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता, और परछावे में आता भी है। कन्याओं माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जैसे कुमारका दैत्य जैसी ब्रह्मा कुमारियों का प्रभाव ब्रह्मा के ऊपर पड़ता था या नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था, पड़ता था। तो चंद्रमा प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, कभी बच्चे के प्रभाव से माता प्रभावित हो जाती, कभी माता के प्रभाव से बच्चा प्रभावित हो जाता, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी अंधकार का ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ज्ञान में रहता है। सूर्यवंशी शिरोमणि है, रघुवंश शिरोमणि राम को कहा जाता है, वो राम वाली आत्मा सूर्यवंशियों में शिरोमणि है, तो सूर्य अंधेरे में नहीं आता, तो सूर्यवंशी अंधेरे में आएंगे? नहीं आ सकते। और संगम युग में तो अंधेरे में आने की बात ही नहीं, लेकिन नंबर वार तो है, कोई 100% उजाले में रहता है, कोई परसेंटेज में उजाले में रहते, कोई पर कोई परसेंटेज अंधेरे का नहीं आता, हर परिस्थिति में हर माहौल में हर व्यक्तियों के बीच हर प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए वो राम वाली आत्मा कैसी नहीं होती है? हाँ, अज्ञान के अंधेरे में आकर के मौज से अलग नहीं हो सकती। जो महावाक्य है, संगम युग है मौजों का युग या दुखी होने का युग, तो कोई आत्मा तो होनी चाहिए रंगमंच पर संगम शूटिंग पीरियड में, जो सदैव मौज में रहती हो, कैसे भी अज्ञान का माहौल हो उसको ज्ञान बल से कैसा बना दे? रोशनी वाला बना दे। इसलिए बोला कि नई दुनिया आती है तो पुरानी दुनिया भी खलास होना जरूरी है, और खलास करने वाले निमित्त भी बनते हैं, और नई दुनिया बनाने का कोई निमित्त बनता है, एक है नई दुनिया बनाने वाला और बाकी सब हैं मनन चिंतन करने वाले मनु की औलाद मनुष्य। मनुष्य किन्हें कहा जाता है? मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है, विष्णु की औलाद को वैष्णव, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ती है ना, ऐसे ही मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु मनन चिंतन मंथन करने वालों में सर्वोपरि, तो बच्चे भी मनन चिंतन मंथन करने वाले होंगे या डंब बुद्धि होंगे? सब नंबर वार मनन चिंतन मंथन करने वाले प्रत्यक्ष होते हैं, तो मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? जिसका मन चलायमान है, जिसके मन में संकल्प विकल्पों की तरंगे चलती रहती हैं, निसंकल्प ज्योति बिंदु स्टेज में स्थिर नहीं हो सकता, बिंदु रूप स्टेज में निरंतर स्थिर नहीं हो सकता, तो उसको भगवान कहेंगे? है
नहीं।
भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान को सोच विचार संकल्प विकल्प करने की दरकार है?
नहीं।
है
नहीं।,
नहीं है। भगवान तो असोचता को कहा जाता है। तो दो हो गए भगवान के रूप, एक निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप और दूसरा साकार मनुष्य आत्माओं के बीच में साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जो पुरुषार्थ करके अपने को याद की ऐसी स्टेज में 100% टिकाई लेता है, जिस स्टेज में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आ सकता, बिंदु रूप पुलिस स्टाप, तो उसको टाइटल मिलता है भगवान का। इसलिए भगवान बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से, कि भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं?
भगवान
भगवती बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनानी है ना, कि निवृत्ति मार्ग की बनानी है, तो भगवान के साथ भगवती भी जरूरी है। भगवान भाग्यशाली रथ है तो भगवती भी भाग्यशाली रथ। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो भगवान का पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है, वो मन बुद्धि का सुख भोगता है जन्म जन्मांतर। क्या? देह का सुख उसे पसंद नहीं। क्यों? कि देह विनाशी तो देह का सुख भी विनाशी। वो आत्मा कोई भी जन्म में 84 के चक्र में आएगी, भले द्वैतवादी हिंसक दुनिया में आएगी तो भी हिंसक युद्ध के बीच में भले उसको सैकड़ों घाव लगे शरीर के, तो शरीर का सुख हुआ नहीं हुआ? लेकिन रानियों को है, रानियों को घाव नहीं लगते हैं, वो युद्ध में नहीं जाती हैं, जाती हैं? नहीं जाती हैं। उनको तो जन्म जन्मांतर देह का सुख मिलना है, क्योंकि देह को पवित्र रखा है। क्या? संगम युग में किसके ऊपर पवित्रता हासिल की? देह के ऊपर या आत्मा के ऊपर? देह के ऊपर पवित्रता हासिल की। देह को अपवित्र नहीं होने दिया कोई भी कीचक के द्वारा, कोई भी दुर्योधन दुशासन के द्वारा अपवित्र नहीं होने दिया। इसलिए उनको जन्म जन्मांतर देह का सुख मिलता है, लेकिन जो मन का सुख है क्या? स्वाधीनता, किसी के अधीन नहीं रहना। रानियों को अधीन रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता? राजा के अधीन रहना पड़ता है। तो वो मन बुद्धि का सुख नहीं है, देह का सुख है। लेकिन देह के सुख में भी वो नंबर वन, जो भगवान भगवती का टाइटल लेने वाली आत्माएं हैं, और उनमें से एक मन बुद्धि का भी अव्वल नंबर का सुख लेने वाली आत्मा, जन्म जन्मांतर के लिए अंतिम जन्म को छोड़कर। क्यों? कि जो कभी दुखी नहीं होगा, दुख के बंधन में ही नहीं आएगा, तो सुख को पहचानने की उसको वैल्यू होगी? दुख के बंधन में आए तो सुख की वैल्यू। इसलिए ये संसार सुख दुख का है। कोई आत्माएं ज्यादा से ज्यादा समय, लंबे समय तक इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सुख भोगती हैं। इसलिए कोई मुरली में बोला है कि कोई आत्मा है 82-83 जन्म भी सुख में रहती, सिर्फ अंतिम एक दो जन्मों में दुख में जाती। चलो कोई की बात छोड़ दो, लेकिन तुम बच्चों के लिए तो खास बताया, तुम सूर्यवंशी बच्चे 3 हिस्सा षष्ठ रूपी रंगमंच पर सुख भोगते हो और 1 हिस्सा दुख भोगते। दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती, तो कौन फायदे में रहा? है भगवान के बच्चे फायदे में, सुख के सागर के बच्चे हैं तो सुख में ही रहेंगे ना। तो ऐसी सुख की दुनिया आने वाली है, ब्राह्मणों की दुनिया के बीच ही आने वाली है। ऐसी सुख की दुनिया, छोटी सी दुनिया बनाने वाले कितने ब्राह्मण होंगे? 8 ब्राह्मण होंगे, बाकी नंबरवार होंगे वो 8 ब्राह्मण, या एक जैसे नंबर के होंगे? जो अव्वल नंबर का होगा वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण अंधेरे में आएगा, महाशिवरात्रि में जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होगी, चाहे बाहर के अज्ञानियों की दुनिया, चाहे ब्राह्मणों में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, तो कोई बचेगा क्या? है हाँ, जो एक बचता है वो महाकाल कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाला, विकराल रूप धारण करने वाला, जिसके द्वारा ये ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है। नाम क्या है यज्ञ का? रुद्र ज्ञान यज्ञ, कोई और देवता का ज्ञान यज्ञ नहीं, निराकार भगवान शिव का ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि उस निराकार ज्योतिबिंदु का नाम तो शिव है, दूसरा कोई नाम उसका है ही नहीं। दूसरे नाम जो भी पढ़ते हैं वो शरीर के आधार पर, शरीर के काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। तो रुद्र नाम शरीर के द्वारा रौद्र रूप, विकराल रूप जिसने धारण किया उसकी यादगार है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी ज्ञान यज्ञ या अविनाशी ज्ञान यज्ञ? अविनाशी ज्ञान यज्ञ है तो रचयिता भी अविनाशी होना चाहिए। वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ का रचयिता आदि में भी निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ा था या अनिश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा? कैसे? युद्ध होता है तो योद्धाएं मरते हैं, लेकिन कोई योद्धाओं में भाव रहता है हम देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते प्राण भी छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि उनका भाव श्रेष्ठ था या खराब भाव था? श्रेष्ठ भाव था, हम देश की रक्षा के लिए भले प्राण भी छोड़ दें। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, हम ईश्वरीय कार्य को छोड़ नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका नहीं सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भाव लय वाली आत्माएं हारी हुई कही जाएंगी क्या? नहीं, वो तो युद्ध में स्थिर कही जाएंगी। शरीर से युद्ध में स्थिर ही होकर के रहेंगी, अगला जन्म भी लेंगी तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगी, ज्ञानियों के बीच जन्म लेंगी और फिर युद्ध करेंगी। क्या युद्ध करते करते शरीर छोड़ा ना, भावना क्या रही? है जीतने की भावना थी या हारने की भावना थी आत्मा में? तो जीत की भावना लेकर शरीर छोड़ा तो अगला जन्म लेंगी, फिर युद्ध करती हैं और युद्ध में विजयी होती हैं। यही बात गीता में अर्जुन से कही है। क्या? मोक्ष से महीम, अगर जिंदा रहेगा युद्ध करते करते तो पृथ्वी का राज्य करेगा, शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, अगला जन्म लेगा तो स्वर्ग स्थिति में जन्म लेगा। माना आत्मा ऐसी स्टेज में जन्म लेगी जहां आत्म की स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। तो स्वयं स्थिति में हुआ या देह की स्थिति में हुआ? स्वयं स्थिति में। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में वो रुद्र रूप धारण करने वाला ऐसा विकराल रूप धारण करता है कि सारी दुनिया एक और वो एक आत्मा एक और, भले लाश भी गुम कर दी जाती है तो भी उसका भाव श्रेष्ठ रहता है या गिरा हुआ भाव रहता है? क्या श्रेष्ठ भाव? कि संग के रंग से जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुनिया बनेगी। किसके संग के रंग से? निराकार के संग के रंग से। एक निराकार सो साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए वो भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो आत्माएं दुर्भाग्यशाली भी बनती हैं और आत्माएं भाग्यशाली भी बनती हैं। लेकिन किसके संग के रंग से भाग्यशाली और किसके संग के रंग से दुर्भाग्यशाली? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसा होता है। कैसे? हाँ, निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। एक पर निश्चय बुद्धि धारण करके रखेंगे तो विजय ही विजय है। इसलिए ये बात पक्की कराने के लिए कि तीसरी बार भी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है, हाँ ये जरूर है। कोई माया के रावण के प्रभाव में आकर के, मायावियों के प्रभाव में आकर के पहले अनिश्चय बुद्धि की मौत मरेंगे और कोई कोई बाद में मरेंगे। जो सबसे बाद में मरेगा तो ज्यादा पावरफुल हुआ या नहीं है? ज्यादा पावरफुल हुआ। और जो ज्यादा पावरफुल होगा वो आत्मा आठ की लिस्ट में आएगी या नहीं आएगी?
आएगी।
ऐसे ही नंबर वार सात और वो आठ आत्माएं अनिश्चय बुद्धि की मौत मरेंगी तो जरूर। ये तो निश्चित है कि एक ही सत्य बचेगा, बाकी कुछ न कुछ परसेंटेज में झूठे हैं, लेकिन फिर भी नंबर वार हैं या एक जैसे हैं?
नंबर वार।
तो कोई पहले पहले निश्चय बुद्धि बन जाएंगे और जो आठ पहले पहले निश्चय बुद्धि बनेंगे उन ब्राह्मणों का संगठन ऐसा संगठन रूपी केला बन जाएगा जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है। क्या बोला? ये ब्राह्मणों का संगठन, ये संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल किला बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी दुनिया में क्या होता है राज्यों में, एक राज्य की राजधानी से जासूस निकलते हैं और दूसरे दुश्मन की राजधानी में घुस जाते हैं गुप्त रूप में और सारा कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और उन कमजोरियों की बात पता लगते ही उन्हीं कमजोरियों के ऊपर आक्रमण हो जाता है। चाहे वो आज की गवर्नमेंट का वीरप्पन हो, दक्षिण भारत का एक डकैत था वीरप्पन, बीसियों साल उसको सरकार पकड़ने की कोशिश करती रही लेकिन पकड़ नहीं सकी। जब भेदिया पहुंचा दिया तो पकड़ में आ गया। ऐसे ही ओसामा बिन लादेन, क्या नाम दिया? ओ शाम आ गई, सनसेट पॉइंट पर सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला बेसिक ब्राह्मणों के बीच में सूर्य छिप गया, सनसेट पॉइंट। ओ शाम आ गई, सूर्य छिप गया। बिन लादेन, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ तुम्हारे पास है तन मन धन सब इसी ईश्वरी ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा आतंकवादी दुनिया ने माना या नहीं माना? हैं? माना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में खास कोई आतंकवादी है ओसामा बिन लादेन, बेहद का, जो बेसिक ब्राह्मणों को पता चल गया कि वो धमकी दे रहा है, क्या जो भी तुम्हारे पास तन मन धन है वो इस एडवांस ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा करो, नहीं तो छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। बाप रे, तो ये पकड़ धकड़ किसी राज्य के ऊपर जीत कैसे होती है? ओसामा बिन लादेन वो हद का कैसे पकड़ा गया? अमेरिका ने जासूस घुसेड़ दिए और उन जासूसों के द्वारा आखिरी उसकी मौत हो गई, वो निमित्त बन गए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मणों का ये संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। तो दुनिया के जितने भी राज्य हैं वो विकारियों के हाथ में राजा बने बैठे हैं या निर्विकारी है? वो विकारी, उनकी विकारी बुद्धि में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस ब्राह्मणों के संगठन में पांव भी रख सके। ऐसी सशक्त राजधानी, छोटी सी राजधानी भले होगी, जैसे राणा प्रताप की छोटी राजधानी थी, छोटा राज्य था या बड़ा राज्य था? है छोटा राज्य, छोटा राज्य छोटी राजधानी को देख करके अकबर सम्राट, महान अकबर सम्राट, महानता का टाइटल लेने वाला हिस्ट्री में, और लाखों की तादाद में सेना लेकर बार बार आक्रमण करता था, फिर जीत पाया?
नहीं
पाया, नहीं जीत पाया। क्यों, क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि संगठन का किला मजबूत था, वो तो था गिरती हुई दुनिया की राजधानी का किला। लेकिन अभी तो हम ब्राह्मण गिरती कला में जा रहे हैं या योग की चढ़ती कला में जा रहे हैं? हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? याद की प्रैक्टिस तो बढ़ रही है। जो बताया, जब तुम बच्चों की 8 घंटे की याद की प्रैक्टिस हो जाएगी 24 घंटे में, तो तुम बच्चे विजयी होने लगेंगे, तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, शक्ति क्षीण होना बंद हो जाएगा। तो अखूट शक्ति है, वो शक्ति को जब हम सिक्योर करेंगे तो हमको कोई नहीं हरा सकता, वो पवित्रता की शक्ति है। तो बताया, ये पवित्रता की शक्ति कैसे आती है? है पवित्रता माने प्योरिटी, प्योरिटी कैसे आती है? यूनिटी से। कैसे आती है? यूनिटी से। और यूनिटी आती है पवित्र वाइब्रेशन से, पवित्र दृष्टि से, पवित्र वाचा से, पवित्र कर्मों से। अगर विविचारी कर्मेंद्रियां बनेंगी, विविचारी दृष्टि बनेगी, तो यूनिटी रूपी संगठन नहीं बन सकता। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, तुम बच्चे वर्तमान में किस स्टेज पर हो, तुम ब्राह्मणों की जो दुनिया है ये तीसरी दुनिया जो रची गई सन 76 से, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया ये गिरती कला की ओर जा रही है प्रैक्टिकल में, या कर्मेंद्रियों से चढ़ती कला की ओर जा रही है, चढ़ती कला की ओर जा रही है कि मन बुद्धि से चढ़ती कला की प्रैक्टिस बढ़ रही है, हाँ जी, लेकिन नई दुनिया बनने वाली है तो पुरानी दुनिया का क्या हाल होना है, क्यों, क्योंकि जो प्योरिटी यूनिटी से बनती है वो तुम ब्राह्मणों की यूनिटी तैयार नहीं हो रही है, क्यों नहीं तैयार हो रही है, कि तुम बीज रूप ब्राह्मणों में अलग अलग धर्मों के बीज बैठे हुए हैं, कोई सूर्यवंशियों के बीज भी हैं, कोई चंद्रवंशियों के बीज हैं, कोई इस्लामी, कोई बौद्धी, कोई क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं, तो दूसरे दूसरे धर्म वंशों से आई हुई आत्माएं पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर आई हैं या नहीं, तो आपस में लड़ेंगी या नहीं, और प्रैक्टिकल में भी क्या देखने में आ रहा है, ये एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया आपस में लड़ रहे हैं या यूनिटी दिखाई दे रही है, आपस में लड़ रहे, और बाप कहते हैं पांडव कभी लड़ते नहीं, क्या पांडव कभी लड़ते नहीं, कौरव यादव आपस में लड़ते हैं, यवन आपस में लड़ते हैं, यादवों और कौरवों की लड़ाई होती है, तो जो आपस में लड़ते हैं वो पक्का समझ लें हम पंडा बाप के पांडव बच्चे नहीं बने, बने हैं नहीं बने, और निशानी बता दी कि तुम बच्चों की प्योरिटी की स्टेज क्या है, तुम बच्चे भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, तुम बच्चे भी सारे दिन में 10-20-50 दृष्टि की भूलें विचार की जरूर करते होंगे, मुरली में बोल दिया, कोई न करता हो तो हाथ उठाओ, किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो दुनिया विनाश होनी है या नहीं होनी है, नई दुनिया स्थापन होने जा रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होने जा रहा है, तो बोला जरूर नई दुनिया बनेगी, भले 8 की बनेगी, छोटी सी नई दुनिया बनेगी, छोटा सा नया संगठन बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, और बनने के लिए ब्रह्मा मुख से दादी गुलजार के द्वारा अंतिम संदेश भी बता दिया, नई दुनिया बनने के लिए 20 साल तो है ही नहीं पुरुषार्थ के, क्या जो समझे बैठे हैं कि अभी 20 साल पड़े, 20 साल में हम नई दुनिया की जो पक्की राजधानी बनेगी, जो सारी दुनिया से टक्कर लेकर के विश्व विजयी घोषित हो जाएगी, उस नई राजधानी के भांति बनने के लिए अभी 20 साल नहीं है, कितने हैं, है 10 साल है, तो बोला ये नई दुनिया छोटी सी तैयार होने वाली है, जिस ब्राह्मणों की नई दुनिया की यूनिटी में एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा, अभी क्या होता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। राम रावण संप्रदाय के बीच में पुल बना हुआ है भांति भांति के बंदरों का। बंदरों की एक जाति होती है या भांति भांति की जाति होती है? म्यूजियम में वो उसमें क्या पशु पक्षियों का जो जू, उस जू को जाके देखो, भांति भांति के जाति के बंदर होते हैं। तो कोई किस धर्म से कनेक्टेड होकर आए हैं, कोई किस धर्म से कनेक्टेड होकर आए हैं, कोई पर बड़ा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देवभान का, कोई पर देवभान का हल्का छिलका चढ़ा हुआ है। तो ये बंदरों की सेना और जो रावण की सेना है उस पार, उधर की सारी बातें इधर आती रहती हैं और इधर की सारी बातें उधर जाती रहती हैं। तो बताया कि जो इधर की उधर और उधर की इधर करने वाले, जो दो नाव में पैर रखे हुए हैं, तो मुरली में पूछा है ब्रह्म वाक्य में, दो नाव में पांव रखने वाले का क्या हाल होगा? हैं? टांगे चिर जाएंगी और भवसागर में गिर के डूब जाएंगे। इसलिए बताया कि ये डिसयूनिटी फैलाने वाली आत्माएं परसेंटेज में 1% भी हैं तो झूठी हैं या सच्ची हैं? झूठी हैं। ये दुनिया डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? हाँ, मानना नहीं है, सिर्फ पहचानना भी है बुद्धि से, असलियत समझनी भी है कि दुनिया जो ग्लानिंग कर रही है या अधूरे बेसिक ब्राह्मण बच्चा बुद्धि ग्लानिंग कर रहे हैं, वो ही बात सच्ची है या नारियल का पार्ट है, रियल है या नारियल है? तो निश्चय बुद्धि विजयते, लेकिन 100% निश्चय बुद्धि होना चाहिए। परसेंटेज कम होगी तो फेल जरूर होंगे। माया छोड़ने वाली नहीं है ये पुरानी दुनिया, डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी। तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? अरे एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान ही संगम युग में विभिचारी हो जाएगा वो द्वापर युग से विभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक से ज्ञान सुनना है तो एक को ही देखना है, एक की बातों को सुनना है, समझना है और संसर्ग संपर्क संबंध में भी मन बुद्धि से एक के आना है या अनेकों के संग के रंग में आना है? और मन बुद्धि से संसर्ग संपर्क संबंध में वो ही आवेंगे जो प्रैक्टिकल में जिन्होंने संबंध जोड़ा होगा, प्रैक्टिकल में संसर्ग में आए होंगे। संसर्ग संपर्क और संबंध, संबंध गहरा होता है, भले राधा कृष्ण की तरह श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध हो लेकिन अब भी विचारी संबंध हो, दूसरी कोई भी आत्मा दृष्टि में समाई हुई न रहे, जिसका चेहरा बार बार याद आए, ऐसे राधा कृष्ण जैसी दृष्टि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो क्या करना है? ऐसे अभिविचारी योग में हमें रहना है। अगर आंखों से विविचारी योग हुआ, कानों से दो चार की बातें सुनने में लगे रहे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, वो बात हमें बार बार याद आती है, तो कान कैसे हो गए? है विविचारी कान हो। तो बताया, एक के साथ योग में रहना है। प्रैक्टिकल की बात है, सिर्फ बोलने करने की बात नहीं। तो हम नई आत्मा बन जावेंगे, हमारी नई आत्मा हो जावे तो नया शरीर लेकर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। और हम सब वापस चले जाएंगे। कब? जब हमको एक का संग का रंग मन बुद्धि में याद रहे, औरों की याद ना आए। ओम शांति।